नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्टके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो कौन से अध्याय से पढ़ना चाहिए आज प्रभु जी, कुछ स्पेसिफिक?
ऐसे ही ले लेंगे जो अच्छा है।
अच्छा, ऐसे ही ले लें, ठीक है।
कैसा चल रहा है?
जैसा
चल रहे बताइए ना, जहाँ चल रहा वहीं से पढ़ते हैं क्रम
अनुसार।
अध्याय सात और अध्याय सात का दूसरा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। सुत गोस्वामी श्वानक ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कह रहे हैं। सुतवाच ब्रह्मनाधम सरस्वताम आश्रमा पश्चिमे तटे श्याम्या प्रास इति प्रोक्ता ऋषीणाम सत्रवर्धना। सुत उवाच ब्राह्मणाधम सरस्वताम आश्रमा पश्चिमे तटे शम्य प्रास इति प्रोक्ता ऋषीणाम सत्रवर्धनः। सुतावाच ब्रह्मनाधम सरस्वताम आश्रमः पश्चिमे तटे शम्य प्रास इति प्रोक्ता ऋषीणाम सत्रवर्धना। आप लोग दोहरा सकते हैं। ब्रह्मनाधम सरस्वताम आश्रम पश्चिमे तटे शम्य प्रास इति प्रोक्ता ऋषीणाम सत्रवर्धनम्। सुतवाच ब्रह्मनाधम सरस्वताम आश्रम पश्चिमे तटे शम्य प्रास इति प्रोक्ता ऋषीणाम सत्रवर्धना। सुतवाच सुतवाच ब्रह्मनाधम सरस्वताम आश्रम पश्चिमे तटे शम्य प्रास इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धना। माता जी पढ़ेंगे। बड़ो बड़ो सुतवाच ब्रह्मनाधम सरस्वताम आश्रम पश्चिमे तटे शम्य प्रासम इति प्रोक्ता ऋषीणाम सत्रवर्धना। आप लोग मेरे पीछे अनुवाद दोहराएंगे इसका। बोलिए, श्री सूत ने कहा, सभी जोर से बोलिए, जोर से बोलिएगा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शम्य प्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकल्पों को संवर्धित करने वाला है। तात्पर्य बहस डिवाइन विद श्रील प्रभुपाद की जय। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। सरस्वती नदी की पश्चिमी तट का स्थान इस कार्य के लिए विशेष उपयुक्त है और वहीं पर शम्य प्रास्त में वेद व्यास का आश्रम है। शिल व्यास देव गृहस्थ थे तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है। आश्रम वह स्थान है जहाँ आध्यात्मिक कार्यकल्प सर्वोपरि होती है। फिर चाहे वह स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का, संपूर्ण वर्ण आश्रम पद्धति इस प्रकार नियोजित है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन सबों में आध्यात्मिक संस्कृति एक समान लक्षण है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी सारे एक ही जीवन लक्ष्य अर्थात परमेश्वर के साक्षात्कार से संबंधित है। यहाँ तक अतएव जहाँ तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है, इनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अंतर तो केवल वैराग्य के आधार पर औपचारिकता का होता है। सन्यासी अपने व्यवहारिक वैराग्य के बल पर ही समान की दृष्टि से देखा जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्या मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वब्धकान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्णा पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज इस कौन छिप्पीवाड़ा इस यात्रा में। हम सब भक्त यहाँ आए हैं और यहाँ के बहुत ही सुंदर भक्त हैं जो कि यहाँ पर रात दिन मेहनत कर रहे हैं सभी लोगों को भक्ति मार्ग का अनुगमन सिखाने के लिए। स्वयं श्रील प्रभुपाद इस स्थान पर आया करते थे जहाँ श्री राधा वल्लभ पिछले 100 वर्ष से अधिक ये विग्रह यहाँ पर विराजमान है। बहुत ही महत्वपूर्ण पत्थर से ये बने विग्रह हैं जो कि आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं, जिनके बारे में बाद में आपको यहाँ के भक्तगण वर्णन करेंगे। तो जो लोग नए आए हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं कितने सुंदर विग्रह हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने इस स्थान को चुना था क्योंकि ये छावड़ी बाजार जो है यहाँ पर पेपर बड़ा सस्ता मिलता है। तो श्रील प्रभुपाद जी जिस ग्रंथ से हम पढ़ रहे हैं जो आपके हाथ में है, ऐसे श्रीमद् भागवत को लिखने के लिए इसके लिए कागज चाहिए होता था तो सस्ता कागज यहाँ मिलता था, प्रिंटिंग प्रेस यही थी, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने स्थान को चुना। आज तो इस स्थान को इन भक्तों ने बहुत मेहनत करके इतना सुंदर मंदिर बनाया है। तो पहले जब आया करते थे तो स्थान पर बहुत टूटा हुआ स्थान था, देखेंगे आप गलियां कितनी छोटी हैं। ऐसी गलियों पे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद रात दिन मेहनत करते थे, पेपर खरीद के लाते थे सिर पर रख करके और फिर श्रीमद् भागवत का पाठ करते। आज स्थिति ऐसी है उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ को पढ़ने और सुनने के लिए भी लोग नहीं है, भक्तों के अंदर जागरूकता नहीं है और इसका कारण है हमारा प्रचार पूर्ण रूपे नहीं चल रहा है। इसीलिए तो घर घर से इस छावड़ी बाजार में यहाँ बहुत सारे लोग हैं और सबको यहाँ आना चाहिए। तो बहुत अच्छा सुंदर श्लोक जैसा भक्तों ने कहा बोलने के लिए सुत गोस्वामी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि जो वेद व्यास थे उनका स्थान सरस्वती नदी के पश्चिमी तट के स्थान पर था और शम्य प्रास नाम का स्थान था जहां पर वेद व्यास जी का क्या था, आश्रम था। ये आश्रम का मतलब है जिस स्थान पर क्या होता है, आश्रम का अर्थ है जब हम हरिद्वार ऋषिकेश वृंदावन जाते हैं तो कहते हैं कहाँ रुके हैं, तो कहते हैं जी आश्रम में रुके हैं। आश्रम का मतलब जहां पर कथा कीर्तन हो, भजन हो, भगवान के विग्रह की सेवा हो, प्रसादम पाया जाए और रहने की व्यवस्था हो, इसी को तो आश्रम कहते हैं। आध्यात्मिक चर्चा है जहां पर रहे, तो ये आश्रम है। अब इसमें ब्रह्मचारी आश्रम भी हो सकता है कि विवाह नहीं किया हो, इसमें गृहस्थ आश्रम भी हो सकता है कि विवाह कर लिया है, वानप्रस्थ हो सकता है कि पति पत्नी साथ रहते हैं पर संतान से आसक्त नहीं है। इधर आ जाइए सब लोग, इधर वरना ठंड लगेगी रास्ते में। तो इस तरह से है, तो ये कोई भी आश्रम हो सकता है जिसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना गृहस्थ आश्रम में भक्ति कैसे की जाए। गृहस्थ आश्रम का एकदम परफेक्ट उदाहरण अगर देखें तो बताते हैं कि गृहस्थ आश्रम में जितने भी भक्त हुए हमारे इतने शास्त्रों के अंदर सभी गृहस्थ थे। अर्जुन जिनका फोटो कवर पेज पर आता है भगवद गीता के, है ना, बहुत बड़े बड़े मॉडल होते हैं जिनका फेस कवर पेज पर आ जाए, है ना। और किसका आया, अर्जुन का। क्यों आया, क्यों आया, वो ब्रह्मचारी थे, नहीं नहीं सन्यासी थे, कौन थे, गृहस्थ, ग्रस्त थे। लेकिन ग्रस्त होने के बाद में काम क्या करते थे, भगवान के शरणागत भक्त थे। कहते हैं कार्पण्य दोषम उपस्तवावा प्रशाम्यम धर्म समूढ़चेता, मुझे आप धर्म का ज्ञान बताइए, मैं कांप रहा हूं, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है। ऐसे स्थान पर कहते हैं शिष्यस्तहम शादी माम तुम प्रपन्नम, मैं शिष्य बनकर आपकी शरण में आया हूं, हे प्रभु मुझको क्या करिए, ज्ञान प्रदान करिए। क्या हम ग्रस्त आश्रम में ऐसे बोल सकते हैं शिष्यस्तहम शादी माम तुम प्रपन्नम, ये बोलने के बाद ना ये बहुत बड़ा डायलॉग है, ये कोई श्लोक नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्लोगन है, शिष्यस्तहम शादी माम त्वम प्रपन्नम, अब मैं आपकी शरण में आया हूं शिष्य बनकर, जो बोलेंगे वो करूंगा। नॉट वेरी सिंपल, इतना आसान नहीं है, है ना। अभिमन्यु पुत्र मर जा रहे हैं और उसके बाद में अर्जुन को कहा जा रहा है पुनः युद्ध को प्रारंभ करो, आपके घर में कोई बच्चा बुखार आ जाए तो निकल पाएंगे मंदिर से बाहर, घर से बाहर निकल पाएंगे, बच्चे को बुखार हो, पत्नी को बुखार हो, ऐसी अवस्था में क्या निकल पाएगा कोई व्यक्ति। आदमी कहेगा नहीं प्रभु जी अभी हम उतने बड़े भक्त नहीं है, बी प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकलिटी हमें पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम में घुसा है और कुछ नहीं। बार बार घूम रहे पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जटरी जटरी शरणम। एक दिन तो ऐसा करना पड़ेगा कि हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि आज शरणागति 100%, आज अगर आपकी 10% शरणागति है तो 90% अभी आपकी कृपा बची हुई है, अगर आपकी 50% शरणागति है तो 50% कृपा भगवान की अभी बची हुई है, अगर आपकी 100% शरणागति है तो फिर भगवान की 100% कृपा है। तो आप क्या चाहते हैं, 100% कृपा या 90% 10% कृपा। हाजी 100 के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 के लिए 100-100 के जीवन नहीं उधारना है, 100-100 के जीवन नहीं उधारना, हमें जागरूकों के जीवन उधारना है। भागवत कथा है 8 बजे, कितने बजे आना चाहिए, 9 बजे, हाँ 8 बजे से पहले आना चाहिए ग्रंथ शुरू होने से पहले, क्योंकि ये आप हमारा सम्मान करें ना करें ये गद्दी है किसकी, वेदव्यास जिनके बारे में चर्चा हो रही है, सम्यक प्रासक स्थान पे सरस्वती नदी के किनारे वही उनका आश्रम है, और वो वेदव्यास के द्वारा ये श्रीमद् भागवत आज से 5000 साल पूर्व लिखा गया। कई लोग बोलते हैं वेदव्यास जी ने लिख दिया तो कौन सी बड़ी बात है, हमारे लिए इसकी क्या महत्वपूर्णता है, वो भी तो एक इंसान है कुछ भी लिख देंगे। भगवान गीता में कहते हैं ऋषिनाम वेदास्मि वेदव्यास अस्मि, ऋषियों में मैं व्यास हूं, व्यास देव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वयं भगवान कह रहे हैं ऋषियों में मैं व्यास हूं। तो ऐसे व्यक्ति स्वयं भगवान ने ये लिखा है तो इसमें कुछ गलत नहीं लिखा। गृहस्थ आश्रम का मतलब है जिस घर में श्रम मेहनत थोड़ी कम हो जाए, आ मतलब भगवान आराम से रहे और क्या करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, घर के बाहर से कोई निकले ना तो अभी घर के बाहर से आवाजें आती हैं, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, जिस दिन से आई है उस दिन से मेरे घर में परेशानी है। ये आवाज घर के बाहर से लोग कहते हैं, भाई साहब थोड़ा धीरे बोलिए, आपकी आवाज हमारे घर तक आ रही है, हम बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, है ना, आप सामान फेंकिए लेकिन साइलेंसर लगा के फेंकिए, आवाज नहीं आनी चाहिए, है ना। लेकिन आज कैसी आवाज आनी चाहिए ग्रस्त आश्रम के घर से, हाँ, भगवान के कीर्तन की आवाज आए, पड़ोसी आकर के बोले भाई साहब थोड़ा धीरे कर लीजिए, बहुत जोर का कीर्तन हो रहा है। इसके साक्षात उदाहरण है अद्वैत आचार्य, पंच तत्वों में से अद्वैत आचार्य ग्रस्त आश्रम में है, जिनकी पुकार पर कौन प्रकट हो जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट होते हैं। सिर्फ शालिग्राम शिला के ऊपर एक तुलसी दल डालते थे, 50 वर्ष का एक बुजुर्ग व्यक्ति, दाढ़ी में आपने देखा भगवान का फोटो, अद्वैत आचार्य महाविष्णु सदाशिव के अवतार, और उनकी प्रार्थना पर कौन उतर आते हैं, चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण। आप कहेंगे अच्छा उनकी पुकार में दम होगा, हमारी पुकार में दम नहीं है, या फिर भगवान हमको इग्नोरेंट मोड में डाल दिए कि ब्लॉक कर देते ना नंबर, जैसे ये बंद कर दो भक्तों का नंबर, इनका साथ मुझे जाना ही नहीं, ब्लॉक कर रखा है, कितना भी पुकारो आएंगे नहीं, ऐसा है क्या, ब्लॉक किया क्या भगवान ने नंबर आपका किसी का, फिर क्यों नहीं आ रहे हमारे लिए भगवान, हम पुकारते नहीं है, बिल्कुल सही, हमारी पुकार में कमी है ना। एक बार एक बच्चा था, वो बच्चा गिर गया तो रोने लगा, रोते रोते उसकी माँ आई, कहती है बेटा रोना बंद कर दो, तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ, लड्डू लेके आई हूँ, लड्डू खाया खुश हो गया, दूसरे दिन समझ गया गिरो तो लड्डू मिलते हैं। दूसरे दिन आया माँ को, माँ खाना बना रही थी, रोने लगा, माँ माँ लड्डू लड्डू, माँ मेरे को चोट लग गई, माँ ने सुना नहीं, फिर तुम उनके पास जाके कहता है माँ कल तब मैं गिरा था तब तो तुम लड्डू लेके आई थी, लेकिन आज मैं गिरा तो तुम आई नहीं, माँ का पल्लू पकड़ के खींचता है, माँ ने गोदी में उठाया, कहा बेटा कल तो मुझे पुकार रहा था, आज तो लड्डू पुकार रहा था, है ना। तो हमारी पुकार क्या है, बोलते तो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, परंतु मन में क्या रहता है, एक गाड़ी मिल जाए, फ्लैट मिल जाए, सर्दी थोड़ी कम हो जाए, शॉल में से हाथ बात ना निकले मेरे, अंदर ही अंदर रोटी आ जाए, है ना, ऐसी सारी प्रार्थना और इच्छा हरि नाम लेते में करेंगे ना। आजकल तो लोग जप माला को भी ऊनी माला बना लिए हैं, देखा उंगली भी ऊनी होती है, बस जप माला जैसे तैसे पकड़ रखी होती है, पता नहीं अंदर मूंगफली खा रहे होते हैं क्या होता है, पूरा कवर कर लेते हैं, ठंड कहीं से ना लग जाए बस, है ना, इतना सिक्योरिटी पे को प्रोटेक्शन करेंगे तो कृष्ण पे कहाँ निर्भर है व्यक्ति, वो तो अपना प्रोटेक्शन ही कर रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम कपड़े उतार कर घूमने के लिए कह रहे हैं, परंतु अगर कोई उतार के भी घूमेगा और भगवान पर उसकी अगर श्रद्धा होगी ना, होगा कुछ नहीं उसको, यही श्रद्धा की बात है, श्रद्धा नहीं है, जितनी श्रद्धा की कमी है उतनी ही कृपा की कमी है, बस पूर्ण रूपेण श्रद्धा पूर्ण रूपेण कृपा। देखिए अद्वैत आचार्य के घर पे स्वयं चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद में वो जाना चाहते थे वृंदावन, और अद्वैत आचार्य जी के घर पर नित्यानंद प्रभु के द्वारा उनको लाया गया, कहा चलो चलो आपको वृंदावन ले चल रहे हैं, गंगा नदी का दर्शन करा के बोला यही यमुना है, चलो बैठो यमुना में, यमुना का स्नान करा, यमुना का दर्शन किया, बोले आ गया वृंदावन। अद्वैत आचार्य जी के घर पे ले आए थे, बोले अद्वैत आचार्य तुम भी वृंदावन आए हो, बोले मैं वृंदावन नहीं आया, आप शांतिपुर आए हैं, आप मायापुर में आए हैं, खरे मुझे तो घुमा फिरा के तुम लोग वहीं ले आए, कह रहे आप महाभाव वेश में रहते हैं प्रभु, आपको क्या बताएं। तो कहते हैं उन अद्वैताचार्य के घर पे चैतन्य महाप्रभु अपनी संन्यास लेने के तुरंत बाद में 10 दिनों तक अद्वैताचार्य के घर पे रहे, जहां पर उनकी पत्नी है परिवार है, ऐसा ग्रस्त आश्रम, उस ग्रस्त घर में क्या क्या होता है उसका वर्णन जैसा इस श्लोक में आया वैसा ही वर्णन हम अभी आपको बताते हैं कि जैसे वेदव्यास जी ग्रस्त आश्रम में थे उन्होंने शास्त्र की रचना करी, पता कितने शास्त्र लिखे, 18 पुराण 108 उपनिषद 108 उपनिषद 18 पुराण, इन सबको लिख डाला वेदव्यास जी ने, कौन से आश्रम में थे, संन्यास में थे जी ग्रस्त में थे। आप लोग अपनी नोट्स कॉपी भी नहीं लिख पाते हैं, शॉल में हाथ ऐसे रखते हैं, पेपर पेन भी नहीं लाते, कथा सुनने आते हैं, लाए तो लिखिए कुछ, तो वेदव्यास जी 18 पुराण लिख सकते हैं, 108 उपनिषद लिख सकते हैं, हमारे पास लिखने के लिए क्या है, मोबाइल रिकॉर्डर आ गया आजकल, उसे ऑन कर लेते हैं, बाद में तो टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि रोज ही रिकॉर्ड करते रहते हैं तो सुनेंगे कब। बोले एक व्यक्ति मिले थे, बोले मेरे पास 64 GB डेटा है लेक्चर्स का, मैंने कहा लेकिन आप तो अभी तक माला नहीं शुरू किए, बोले सुना नहीं कभी भी मैंने, रिकॉर्ड करके घर ला के रख लेता हूँ खाली, है ना। तो 64 GB डेटा हो लेकिन अगर यहाँ 0 डेटा हो तो कोई काम नहीं चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का मतलब ये नहीं कि हम इन पर निर्भर होकर के भक्ति करना छोड़ दें, भक्ति करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लिखें, पढ़ें, रोज कथा कीर्तन हो। तो कहते हैं उन अद्वैताचार्य के घर पे 10 दिनों तक सेवा चलती रही। कैसे चली?
एमता दश दिना भोजन कीर्तन एक रूप करी कर प्रभु सेवन। एमता दश दिना भोजन कीर्तन एक रूप करी करे प्रभु सेवन।
चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में आता है कि किस प्रकार से सेवा हुई। एमता दश दिना भोजन और कीर्तन, दो चीजें चलती है गृहस्थ आश्रम में। अद्वैताचार्य कह रहे हैं क्या चीज? भोजन और कीर्तन। भगवान के लिए भोग बनाओ, भगवान को अर्पित करो, बाद में प्रसाद पूरा परिवार पाए और क्या करे? कीर्तन। अब इसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पायार के अंदर। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं एक रूप करी करे प्रभुर सेवन। एक रूप से फिक्स्ड, ये नहीं कि आज हमारे जैसे 7:40 पे तो भागवतम कक्षा कितने बजे शुरू होना चाहिए था? 8 शुरू हुआ 8:30। एक रूप एकदम जो टाइम फिक्स है उसी टाइम पर। आदमी बोले मंदिर में तो हो सकता है, घर में मुश्किल है। अगर हम चाहें तो मुश्किल भी काम साधारण बनाया जा सकता है, कृष्ण की कृपा है ना। अगर आपके ऑफिस जाने का टाइम है 8 बजे तो क्या कभी 8:15 पे पहुंचेंगे? चलेगा? अगर आपके स्कूल में बच्चे के जाने का बस का टाइम है 7:30, कभी लेट होगा? चलेगा? तो फिर ये भक्ति में क्यों लेट है? क्योंकि ये हमारी जरूरत नहीं है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में लिखा है एक रूप हो करी करे प्रभुर सेवन। प्रभु की सेवा कैसे होनी चाहिए? एक रूप से होनी चाहिए। इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए आज 7 बजे मंगला आरती, कल 9 बजे मंगला आरती, परसों तो किया ही नहीं, सीधा किया संध्या आरती। बोले क्यों? स्वामी जी सो रहे थे 12 बजे तक, ठंड बहुत थी, बाहर भी कोहरा था, मन में भी कोहरा था, आज मंगला आरती नहीं हुई। घर में ही करना चाहते तो घर में करिए, पर एक समय पे करिए, 5 तो 5, 6 तो 6, लेकिन ये नहीं कि कभी 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 कभी। इस तरह से फिक्स डिवोशनल सर्विस चल रही थी। वो कहते हैं अगर फिक्स डिवोशनल सर्विस किसी व्यक्ति की चलती है तो कैसा हो जाता है जीवन? अभी देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है कि अगर कोई व्यक्ति फिक्स्ड डिवोशनल सर्विस करता है, एक ही समय पर माला, एक ही समय पर प्रसादम, एक ही समय पर शास्त्र पढ़ना, एक ही समय पर सेवा, अगर कोई व्यक्ति टाइम टेबल शेड्यूल से चलता है तो कहते हैं आनंद नाचिया सबे बोले हरी हरी, आचार्य मंदिर हैला श्री वैकुंठपुरी। आनंद नाचिया सबे बोले हरी हरी, आचार्य मंदिर हैला श्री वैकुंठपुरी। आचार्य जो थे अद्वैत आचार्य, उनका घर जो था ना श्रीवास आंगन के पास में, अद्वैत आंगन है वो, अद्वैत आंगन जो आज मंदिर कहलाता है, अद्वैत मंदिर, वो क्या बन गया था? वैकुंठपुरी। इसका मतलब ग्रस्त आश्रम भी क्या बन सकता है? वैकुंठपुरी। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे सारे मंदिर जो है ना वो वैकुंठ धाम है। सही बात है, सबके सब वैकुंठ है, क्योंकि यहां पर वैकुंठ में क्या होता है? कुंठा रहित। मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति मंदिर में कथा में आके कुंठा में भरा हुआ होगा। होता है कोई मंदिर में आके कथा में कुंठा में रहे? मैनेजमेंट में होते हैं वो एंजाइटी में होते हैं, कुंठा में वो भी नहीं रहते हैं। एंजाइटी होती है, प्रभुपाद जी कहते थे एंजाइटी फॉर कृष्णा इज प्यूरिफाइंग। अगर हम कृष्ण के लिए चिंतित हैं, सेवा के लिए अगर हम उसमें टेंशन में भी है तो वो हमें शुद्ध करेगी, लेकिन हम भौतिक संसार को लेकर क्यों टेंशन में नहीं रहते हैं? इसलिए कहा आनंद नाचिया बोलो हरी हरी। क्या बोलना चाहिए? आप लोग तो बोलते नहीं हो, क्या बोलना चाहिए? हरी हरी, इतना धीरे धीरे नहीं, हरी हरी। हाँ, अभी जब प्रसाद में मिर्ची आती है तो क्या बोलते हैं? हरी हरी, है ना। तो उस समय तो याद आता है हरी हरी चाहिए, वो वाली पीली वाली नहीं, हरी हरी। लेकिन जब भगवान का नाम पुकारे जो कि कहते हैं तुम्हारा सब कुछ जो परेशानी है उसका मैं हरण कर लेता हूं, इसलिए मेरा नाम हरी है, तुम्हारे जीवन के सारे दुख हम मैं हरण कर लेता हूं, ऐसे भगवान हरी अवतार लेके आते हैं। 24 अवतारों में से भगवान का एक नाम है हरी अवतार। मालूम है कब हुआ था भगवान का अवतार? हरी अवतार कौन सी जगह हुआ? हाँ, सतयुग में तो हो गया, तो आप बोलकर छूट गए। हुआ कब, किस कारणवश हुआ हरि अवतार? हाँ, गजेंद्र की रक्षा करने के लिए जब भगवान आते हैं वैकुंठ धाम से तो हरि अवतार कहलाता है। आनंद नाचिया सबे बोले हरि हरि, है ना। आचार्य मंदिर हरिला श्री वैकुंठपुरी, तो आचार्य जो थे उनका घर वैकुंठ धाम बन गया था। आनंद में लोग नाचते थे, कीर्तन करते थे, लेकिन अभी हम लोग आनंद में करते हैं। भागवत में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं गृहस्थ आश्रम में रोज की रोज कम से कम 3 घंटा कीर्तन होना चाहिए, एवरीडे 3 आवर्स कीर्तन फॉर गृहस्थ आश्रम। टेम्पल नहीं लिखा, मंदिर नहीं लिखा, ब्रह्मचारी नहीं, 3 घंटा कीर्तन होता है, 3 घंटा। कह रहे कहाँ करेंगे, जप ही नहीं हो रहा 2 घंटे। रात को 10 बजे पूछो कितनी माला हो गई, बोले 2 बाकी है। हमारा तो 16 टारगेट मान के चल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा मिनिमम 16 राउंड्स, कम से कम 16 वाला। हमको लगता है यही अंतिम लक्ष्य है, 16 पालू उसके बाद मंगल माला को ऐसे स्थान पर टांगूंगा ढूंढने पर भी ना मिले, दूसरे दिन ही ढूंढ ली जाए। कई लोग तो उसको तकिए के नीचे छुपा कर सो जाते हैं। इस तरह से जीवन नहीं होना चाहिए। जीवन कैसा होना चाहिए, दिन कृष्ण कथा रस भक्त गण संगे, रात्रि महामहोत्सव संकीर्तन संगे। दिन कृष्ण कथा रस भक्त गण संगे, रात्रि महामहोत्सव संकीर्तन रंगे। सुबह क्या होना चाहिए, दिन कृष्ण कथा, सुबह सुबह क्या चलनी चाहिए, कृष्ण कथा। अद्वैताचार्य के घर में स्वयं महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे थे, कथा कीर्तन हो रहा था। रात्रि महामहोत्सव, प्रसाद पाने के बाद में महामहोत्सव होता था, और क्या होता था, संकीर्तन संगे, सब लोग मिलकर के संकीर्तन आंदोलन करते थे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु इस संकीर्तन को देने के लिए आए हैं। लेकिन हम लोग क्या कथा करते दिन में, कौन सी कथा चलती है, ऑफिस की कथा, जीवन की व्यथा, ऐसी कथा चलती है। लेकिन सच्चाई ये है कृष्ण कथा। अगर कोई व्यक्ति अपने दिन में कृष्ण कथा करता है और घर में 3 घंटा कीर्तन करता है, अभी 3 घंटा कीर्तन का मतलब ऐसे भी मान सकते हैं, जपमाला 2 घंटा कर लीजिए, 1 घंटा विग्रह सेवा कर लीजिए, तो कीर्तन हो गया, जपमाला भी कीर्तन है। लेकिन वो निजी कीर्तन है और एक संघ कीर्तन है, संघ में बैठकर अड़ोसी पड़ोसी को बुठाए बुलाए, कहे आइए आइए हमारे घर पे क्या हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। श्रील प्रभुपाद चाहते थे मंदिर तो बने लेकिन हर एक घर भी मंदिर बने, हर घर में मंदिर स्थापित हो, गौड़ नेता जगन्नाथ श्री कृष्ण राधा कृष्ण का सेवा हो और अच्छे से सभी लोग भजन कीर्तन करें। हर घर में प्रचार केंद्र बनना चाहिए। अभी हम देखते हैं ब्रह्म कुमारीज क्रिश्चियनिटीज, हर घर घर के अंदर वो लोग अपने चर्चेस खोल रहे हैं, हर घर घर के अंदर शांति सेंटर्स खोले जा रहे हैं। लेकिन हम ऐसे हैं, हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ सर्दी में हाथ पॉकेट में डाल करके सोचते हैं मेरी माला भी पड़ोसी कर दे, माला घुमानी पड़ती है तो ठंड चली जाती है। ऐसे थे हरिदास ठाकुर को जब 22 बलदारों में मारा गया तो कहते थे खंड खंड जाए देही जाए यदि प्राण, तबहु न छोड़े बदने हरि नाम। खंड खंड जाए देही जाए यदि प्राण, मेरे शरीर के खंड खंड कर दीजिए फिर भी मेरे हृदय से क्या नहीं जाएगा, बदने न छोड़े हरि नाम, ये हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। और हम कैसे, जब सर्दी ज्यादा होती है तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करने के बजाय, है ना। तो हमारे लिए एक प्यार लिखा गया है स्पेशल फॉर कलियुगा, ठंड ठंड आए दे ही जाए हरि नाम। ठंड ठंड दिल में आती है तो हमारा हरि नाम चला जाता है, इतना क्या ठंड पड़ गई है। आप विश्वास करिए अगर आप सर्दी में ठंडे पानी से स्नान करेंगे ना, आपको कभी ठंड नहीं लगेगी। अभी हम लोग माया वो पूरी यात्रा में थे, 9 दिन कोई गर्म पानी नहीं था, तो सारे भक्त बोले प्रभु जी क्या करेंगे, मैंने कहा सभी स्नान करेंगे ठंडे पानी से, ट्रेन में भी जगह में सबने ठंडे पानी से स्नान किया। कुछ लोग वापिस आके बीमार पड़ गए, वो अपना प्रारब्ध है, लेकिन वैसे मैं भगवान की कृपा से बचा हूं। तो इसका मतलब है ठंड से स्नान करने के बाद में ना फिर एक स्वेटर की आवश्यकता भी नहीं होती थी। तो इसका मतलब अगर हम लड़े ना ठंड से तो कोई आवश्यकता नहीं, हमें गर्म पानी से नहाते हैं, शॉल आदि पहनते हैं, बहुत बड़े बड़े जैकेट पहनते हैं, उसी लिए ज्यादा ठंड लगती है ना। माया उसी को सताती है जो ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। निर्भरता कर देनी चाहिए कृष्ण के ऊपर, फिर देखिए आनंद का जीवन है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी मायापुर में थे और जाया करते थे अपने विशेष किसी कार्य से, तो कलकत्ता में थे, तो एक भक्त बोलता है उनकी तरफ देख करके, सर्दी पड़ रही थी, सर्दी का टाइम था, तो सर्दी के समय सुबह सुबह 4 बजे उठ करके प्रभुपाद नहाया करते थे, तो जिस गेस्ट हाउस में रुके थे वहां का वो व्यक्ति जो था ना वो देख करके प्रभुपाद जी को बोलता है, अरे ये आदमी ठंड में गमछा डालकर ऊपर बदन पे कुछ पहना नहीं है, सीधा सीधा स्नान घर से बाहर निकल के कहां जा रहा है, रोको इसको। क्या अपने नौकर को बुलाते हैं और कहते हैं आज तुमने कैसे सुबह सुबह कोयला जला करके पानी गर्म कर दिया, तुमको शर्म नहीं आती है? अगर 4 बजे से हम कोयला जलाएंगे तो रात तक तो हमारे पास कोयला बचेगा ही नहीं, बहुत मेहनत महंगा पड़ जाएगा। तो वो आदमी बोलता है बाबू ये आदमी कुछ अलग है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस भी होगा ना तो ये ठंडे पानी से ही नहाता है, गर्म से नहीं नहाता, मैंने तो कोयला भी निकाला ही नहीं, जलाया नहीं। हैरान हो जाता देख के, अरे ये ऐसे नहाता है। हाँ प्रभुपाद जी जब लंदन जैसी ठंड में थे, यूरोपियन ठंड में, अमेरिकन ठंड में बीमार पड़ जाते थे, उनको आकर के भक्त बोलते थे प्रभुपाद जी डॉक्टर ने आपके लिए 2 आदेश दिए हैं, एक तो आप सुबह वॉक कीजिए और दूसरा ठंडे पानी से नहाना बंद कीजिए, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं ठीक है मॉर्निंग वॉक मैं जोड़ सकता हूँ क्योंकि उसमें प्रचार करने का मौका मिलेगा, लेकिन मैं गर्म पानी के लिए वेट कर करके अपना स्नान का समय बढ़ा नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ट्रांसलेशंस करने हैं, इसलिए मैं गर्म पानी से नहाऊंगा। बूढ़े होकर के 80 साल की उम्र में भी यूरोपियन ठंड में ठंडे पानी से नहाते, ये दृढ़ता है। हम ये नहीं कह रहे आप भी कल जाके ठंडे पानी से नहा के सभी हॉस्पिटल्स में एडमिट हो जाए, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन ऐसा है कि दृढ़ता आनी चाहिए हरि नाम के प्रति, जप के प्रति, सुबह उठने के प्रति। गर्म से नहाइए पर सुबह उठिए, भागवत पढ़िए, प्रसाद पाइए, भगवान की आरती करिए, जल्दी से जल्दी जितना करेंगे उतनी कृपा आपको। भगवान कहते हैं ये यथाम माम प्रपद्यन्ते स्थाम तथैव भजामि अहम् मम वर्ताम अनुवर्तन्ते मनुष्यां पार्थ सर्वशः। जितने प्रतिशत आप भगवान के शरण में उतने प्रतिशत भगवान आपकी सेवा करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन क्या है ना, हम फंसे हुए हैं, हम बोलते हैं हम तो ग्रस्त आश्रम में है, ग्रस्त मतलब बंधा हुआ है, पूरा रस्सियों से बंधा हुआ है। हम बचपन में एक स्टोरी पढ़ते थे, बच्चे जानते हैं, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, फिर क्या होता था दाना चुगने बैठ जाती थी और फिर कैसे उड़ती थी, साथ में उड़ जाती थी, उड़ने के बाद में जाती थी किसके पास, चूहे के पास। चूहे क्या करते थे, उनके क्या काट देते थे, जाल काट देते थे, जाल काटने से क्या होता था वो आजाद हो जाती थी। तो अभी ये कहानी बिल्कुल हमारे ऊपर है, हम भी फंस गए हैं, है ना, एक चिड़िया फिर अनेक चिड़िया, पहले व्यक्ति अकेला होता है फिर उसके साथ एक और चिड़िया आ जाती है पत्नी, फिर उसके साथ 2 बच्चे आ जाते हैं अनेक चिड़िया, फिर अनेक चिड़िया के साथ में उसके रिश्तेदार आ जाते हैं, चाचा ताऊ सास ससुर मामा मामी मौसी, आज वो बीमार, आज उनकी शादी, आज उनका बर्थडे, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, दाना चुगने बैठ गई थी। बस क्या करता है आदमी, इनका भरण पोषण करने के लिए रात दिन सेवा करेगा, कैसे करके ये चिड़ियाओं का पेट भर जाए ना। लेकिन सच्चाई ये है ये चिड़िया बहुत भूखी है, इनका पेट भरने वाला नहीं। अगर आप सोचेंगे 100 वर्ष की उम्र तक कमाऊंगा इनका पेट भरूंगा, तो मान लीजिए 101 वर्ष भी लग जाए ना आप, इनका पेट नहीं भरेगा। इसलिए आपको अपना समय निकालना पड़ेगा। ग्रस्त आश्रम में है इसका मतलब आप ग्रह मेदी नहीं है, खाली इंद्र तृप्ति के लिए जीवन नहीं है। बंधा हुआ व्यक्ति बोले हमको फंस गए हैं, ऐसे भी लोग बोलते हैं प्रभु जी माया में फंस गए हैं, प्रभु जी ग्रस्त आश्रम में, प्रभु जी आपको क्या बताएं हमारे घर में कितनी दिक्कत है। चिड़िया की भी दिक्कत थी, एक वयाग ने उसके ऊपर जाल बिछाया था, क्या किया चिड़िया ने, सब मिलकर के उठी, है ना, क्या करके उड़ी, क्या बोलने लगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सभी चिड़िया उड़ गई और उड़ करके कहां पहुंची, उनके पास जहां उनके मित्र रहते थे। आपके मित्र कौन है, मैं तो हुई गुरुदेव श्रील प्रभुपाद राधा कृष्णा, ये हमारे मित्र हैं जगन्नाथ। उनके पास जाएं और जाकर के क्या बोले, हमारा बंधन बंधन कौन काट सकता है, जो खुद खुला हुआ है, जो खुद ही ग्रस्त में होगा। आप पड़ोसी को फोन करें, यार बड़ा परेशान हूं, पैसे की कमी है, थोड़ा मदद करो ना, मैं बड़ा परेशान हूं। कितनी मदद करेगा, पैसा दे देगा आपको लोन के ऊपर, फिर 4 दिन फोन करेगा, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, तूने मेरा पैसा टाइम पर नहीं दिया, है ना। ऐसे करके जीवन चल रहा है लोगों का, लड़ाई झगड़े पैसा। तो इसका कारण यही है कि हमारी भगवान के ऊपर शरणागति नहीं है, हम उस व्यक्ति के पास जा ही नहीं रहे जो हमारे जाल काट सकता है। और जो जाल काटने वाला है वो कभी कभी फोन करके बुलाता भी है, आइए ना आश्रय क्लास में आइए, मंदिर में आइए। तो जाल वाले क्या कहते हैं, प्रभु जी बिजी है, अभी उड़ नहीं पा रहे हैं, आप तक नहीं आ पा रहे हैं, जाल तो है बंधे हुए भी है लेकिन आ नहीं पा रहे हैं आपके पास। बेचारा व्यक्ति खड़ा है कैंची लेकर के, आओ मैं तुम्हारे जाल काटूंगा, लेकिन ये चिड़िया और भी ज्यादा ग्रसित है, वो कह रही नहीं नहीं मैं कटवाना ही नहीं चाहती, मुझे आजादी पसंद ही नहीं है, है ना। लोगों को लगता है भक्ति मार्ग जो है ना वो आजादी की बजाय बंधन है, परंतु सच्चाई ये है कि आजादी है। जो पतंग धागे से जुड़ जाती है वो ऊपर जाती है, और जो पतंग धागे से कट जाती है वो नीचे जाती है। इसका मतलब जब बंधन में होती है पतंग तो कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। इसकी आजादी होती है हवाओं के हिलोरों में, कभी ये ऐसे पतंग उड़ती है, और जब वो कट जाती है बंधन से तो कहाँ जाती है? नीचे। उसको सड़क के लोग फाड़ देते, छीन लेते, ऐसे हमारे साथ हो रहा है। तू मेरा, पत्नी कहती है, माँ कहती तू मेरा, है ना, और दोनों के बीच में वो आदमी खिंच जाता है पूरा। ऐसे ही बच्चे होते हैं, बच्चे बोलते हैं मम्मी तू मेरी, मम्मी की मम्मी कहती है तू मेरी, ऐसे करके खिंचते रहते हैं, और सारा दिन काम मेहनत करते करते पूरा जीवन गुजर जाता है। कहते हैं काम के सिलसिले में दिन भर गए, शाम को खबर आई प्रभु जी के दिन भर गए, है ना, खत्म हो जाता है व्यक्ति ऐसे काम करते करते। लेकिन वो गृहस्थ आश्रम से कभी भक्तिमय आश्रम में नहीं आता। इसका कारण है, लोग बोलते हैं जी सन्यास लेंगे ना, प्रभु जी सोच लिया है 60 साल की उम्र में सन्यास, उसके बाद सेवा, बस डिसीजन जी पेपर पे लिख के दे दो, 60 साल तक जीवित रहोगे, पेपर पे लिख के दे दो स्टैंप लगा के, है ना, राधा वल्लभ के सामने यहाँ रख देते हैं, 60 साल तक जीवित रहोगे फिर स्वीकार कर लेंगे भगवान। ऐसा नहीं बोल सकते कि जीवित रहेंगे। कई लोग अभी चले जाते हैं 24-25 साल की उम्र में, 5 साल के, 1 साल की उम्र में चले जाते हैं, तो कैसे, जब लंबी उम्र नहीं है तो कैसे हम वादा करते हैं संन्यास लेंगे? ऐसे लोगों के लिए संन्यास आश्रम कैसे आएगा? तो भगवद गीता के 6 अध्याय के 1 श्लोक में भगवान कहते हैं अनाश्रितम अकर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सा सन्यासी च योगी च न निरग्नि च अग्नि आश्रय। तो क्या कहते हैं, अनाश्रितम कर्म फलम कार्यम, अपने कार्यों से अनाश्रित हो जाए, जो कार्य करें उस पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, है ना, कि ये फल मुझको मिलेगा, मैंने मेहनत करी है तो फल मुझको मिलेगा। अनाश्रितम कर्म फलम कर्म करोति या, जो कर्म करता है च सन्यासी च योगी च, भक्ति योगी भी वही है और सन्यासी भी वही है, ना। अभी बोल सकते हैं नहीं नहीं वो डंडे वाले महाराज के आगे दंडवत करूंगा, गृहस्थ के आगे दंडवत नहीं करूंगा। लेकिन गृहस्थ अगर अनाश्रितम कर्म फलम है ना, तो लिखा है भगवद गीता के 6 अध्याय के 1 श्लोक में च सन्यासी च योगी, वही परफेक्ट योगी है, वही परफेक्ट सन्यासी है। सन्यासी होने के बाद में भी अगर कोई व्यक्ति अपने कोपीन कंठा और अपने किताब और अपने रूम के प्रति आसक्त हो जाएगा, तो उस सन्यासी से ये ग्रस्त ज्यादा अच्छा है जो ग्रस्ती के बंधन से मुक्त होकर के कृष्ण शरणागति चाहता है। अनाश्रितम कर्म फलम कार्य कर्म की खुदिया, जो कार्य करना चाहता है ऐसे व्यक्ति के साथ में जोड़ना चाहिए। इसके उदाहरण है अद्विताचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, ग्रस्त आश्रम में रह के भजन की एकदम भजन प्रणाली को सिद्ध किया उन्होंने, उसके लिए शरणागति चाहिए। लेकिन हमारा क्या है ना, सबसे प्रॉब्लम है सारी चीजों का मूल जड़ है, हमारे पास एक चीज नहीं है। क्या? एक चीज नहीं है हमारे पास, उसके कारण सारी की सारी प्रॉब्लम है। गृहस्थ आश्रम में भी फंसे हुए हैं, जाल भी नहीं कट रहा है, कीर्तन भी नहीं हो रहा है, प्रसाद भी नहीं खा पा रहे हैं, इसका एक ही कारण है। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल सही पकड़े प्रभु जी। क्या नहीं है? विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं। 9 अध्याय के 3 श्लोक में भगवत गीता में भगवान कहते हैं अश्रद्धानं पुरुषस्य धर्मस्य अस्य परंतपः। हे परंतप, जो व्यक्ति अश्रद्धावान होता है उसके साथ पता है क्या होता है? अप्रत्यम मां निर्वंतते मृत्यु संसार वर्तमनी। जो व्यक्ति मुझको प्राप्त नहीं करेगा और मृत्यु संसार वर्तमनी, इसी मृत्यु संसार में घूमता रहेगा। अगर उसने क्या नहीं पाई? श्रद्धा नहीं पाई। अश्रद्धान पुरुष, जो व्यक्ति पुरुष श्रद्धावान नहीं होगा मेरे प्रति, वो मुझको या तो प्राप्त भी नहीं करेगा और साथ के साथ में मृत्यु संसार वर्तमान, इसी मृत्यु संसार में घूमेगा। 9 अध्याय के 3 श्लोक में भगवान भगवद गीता में कहते हैं हमारे पास में क्या है? सब कुछ है। धोती कुर्ता, यस प्रभु जी, प्रेस किया हुआ तिलक एकदम परफेक्ट, लाइन पूरा दोनों ऐसे, प्रभु जी माला एकदम बढ़िया, प्रभु जी बीट बैक क्लीन, वैष्णव एटिकेट पालन कर रहे हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में अनुगमन नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? श्रद्धा नहीं है। तो इस श्रद्धा को पकड़ के रखना है। गरीब हो अमीर हो, उस व्यक्ति को श्रील प्रभुपाद जी से सीखना चाहिए। कैसे व्यक्ति हैं श्रील प्रभुपाद? आज आप उनके इस स्थान पर आए हैं, आज हम इसका आनंद ले रहे हैं, यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, यहाँ के भक्तों से सीखते हैं, यहाँ के भगवान का दर्शन करते हैं, यहाँ पे बैठे प्रभु जी लोगों का हम धन्यवाद देते हैं जिनके कारण यहाँ इतने सारे भक्त आते हैं कथा कीर्तन सुनने के लिए। यहाँ जब श्रील प्रभुपाद जी रहते थे स्थिति बहुत खराब थी इस स्थान की, बहुत छोटा सा कमरा था जिसमें प्रभुपाद जी रहते थे और भागवतम को प्रचार किया करते थे, ट्रांसलेट करते थे, वृंदावन से लोकल ट्रेन में बैठ करके यहाँ आते थे, 10-10 पैसे के लिए भिक्षा मांगते थे लोगों से कि मुझे दे दीजिए, और फिर इस छावड़ी बाजार पेपर मार्केट से पेपर खरीद करके वो शास्त्रों को लिखते थे। हम ऐसे ना तो शास्त्र लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, ना शास्त्र पढ़ रहे हैं, और उसको अपनाना तो बहुत दूर की बात है। अगर हम अपनाएंगे नहीं तो हमारा जीवन बदलने वाला नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज ही हम शास्त्रों को दृढ़ता से अपने जीवन में अपनाएं, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ सन्यासी, सारे के एक ही जीवन लक्ष्य है परमेश्वर का साक्षात्कार। ग्रस्त आश्रम में आकर के ये बोल के नहीं चलेगा कि अरे मैं ब्रह्मचारी होता ना तो बहुत भक्ति करता, मैं सन्यासी होता ना पूरी ताबड़तोड़ प्रचार करता, ये बोलना झूठ है ना। क्यों? भगवान कहते हैं मैं तो परसेंटेज चेक करता हूं। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है, उसको मैंने 24 घंटे में से 12 घंटे दिए हैं सेवा करने के लिए, 12 आवर्स, और एक ग्रस्त है उसको मैंने 24 घंटे में से 20 घंटे परिवार के दिए हैं, 4 घंटे मैंने उसको दिए भक्ति के लिए। ग्रस्त के लिए कितने दिए?
4 घंटे।
ब्रह्मचारी के लिए कितने दिए? 12 घंटे। अब 12 घंटे में से ब्रह्मचारी मंदिर में 12 घंटे सोता है, 12 घंटे अपना निजी काम करता है, और 12 घंटे सेवा करने के लिए, 12 घंटे में से वो करता है सिर्फ 6 घंटे, 6 आवर्स, और ग्रस्त आश्रम का व्यक्ति है वो 4 घंटे में से सेवा करता है 3 घंटे, मतलब 2 घंटे जप करता है, 1 घंटे कीर्तन शास्त्र पढ़ता है, और 1 घंटे वो कभी श्रवण करता है, किसी दिन अध्ययन करता है, 1 घंटा उसका रह जाता है। और ब्रह्मचारी जो है वो 6 घंटे ऐसे प्रजल्पा में कभी इधर कभी उधर कभी ऐसे वेस्ट कर देता है, या फिर सन्यासी। तो आप बताइए कि 12 घंटे में से जिसने 6 घंटे गुजारे उसने कितने प्रतिशत भगवान की सेवा करी? 50%। एक ग्रस्त के पास में 4 घंटे थे, उसके बाकी समय उसकी नौकरी में, उसके बच्चों की पढ़ाई में, उसके घर में अपने निजी काम में चला गया, पर 4 घंटे उसके पास भी हैं 24 में से, उन 4 घंटों में भी उसने जस्टिफिकेशन नहीं किया, सही रूप से सब कार्य नहीं किया, 3 घंटे ही किया, तो कितने प्रतिशत किया? 75%, 75। लेकिन अगर हम दृष्टि देखें आवर्स की, तो बोलेगा ग्रस्त आश्रम वाला ना, मैं ना 3 घंटे कर पाता हूँ प्रभु जी। ब्रह्मचारी कहेगा ओहो आप तो भी, आपको बहुत आ गया ना, मैं 6 घंटे सेवा करता हूँ मंदिर में, 6 घंटे। भगवान कह रहे थे नहीं बेटा तुझे मालूम नहीं है, 12 घंटे दिए थे उसमें से 6 करता है, ग्रस्त वाले को 4 दिए थे उसमें से 3 करता है, मैं तो प्रतिशत देखता हूँ, मैं ये नहीं देखता हूँ कि तुमने किया कितना। भगवान कहते हैं जितना दिया उसमें से कितना किया है ना, ये नहीं देखते हैं कि किया कितना, जितना दिया उसमें से कितना किया। हनुमान जी और गिलहरी, आप जानते हैं कथा, दोनों समुद्र में पुल बना रहे थे, हनुमान जी की शक्ति के अनुसार वो पर्वत डाल रहे थे, और गिलहरी अपनी शक्ति के अनुसार पर्वत पे धूल डाल रही थी, रेत डाल रही थी। हनुमान जी कहते हैं मेरे पांव के नीचे दब जाओगी, जाओ यहां से चली जाओ। तो भगवान राम उनको डांट करके कहते हैं कि अरे हनुमान ऐसा क्यों कहते हैं इस गिलहरी को, क्या उसकी शक्ति नहीं पुल बनाने की? कहा प्रभु पुल तो बाद में बनेगा, पहले इसका यहाँ पर मृत्यु घाट बन जाएगा, समाधि स्थल हो जाएगी मेरे पांव के नीचे। भगवान कहते हैं हनुमान देखो ये जो गिलहरी है ना, इसको मैंने जितनी शक्ति दी उस शक्ति में से ये अपनी सेवा कर रही है, शक्ति यथाशक्ति। बिचारी तुम सिर्फ 2 हाथों में पत्थर उठा रहे हो, ये अपने पूरे शरीर पे रेत लगाती है, पानी में जाती है, गीली होती है, फिर रेत लगाती है, फिर तो तुम बताओ तुमसे ज्यादा सेवा कर रहे हो तुमसे कम कर रहे हो? अरे प्रभु इस एंगल से तो सोचा ही नहीं कभी, ज्यादा सेवा कर रही है। तो इसी प्रकार से ग्रस्त आश्रम बोल बोल करके आप छूट नहीं सकते भगवान से कि मैं ग्रस्त में था प्रभु, मैंने ना सोते पढ़ते जगते माला कर ली, ये इनके इन प्रकार इन स्वीकार कर लो प्रभु, इस पतित आत्मा पे उद्धार करो, तुम मोसमा पतित प्रभु ना पाई बिहार। ये पतित वाला लेक्चर भी ना वही दे सकता है जो नरोत्तम दास ठाकुर जैसा उद्धारक हो, जो शुद्ध भक्त हो, वो बोल सकता है मोसमा पतिता प्रभु ना पाई बिहार। लेकिन कोई व्यक्ति पतित हो, 8 बजे सोके उठता हो, माला ना करता हो, आके लेक्चर बोले पतिता प्रभु न पाई बेहार, भगवान के तू पतित ही है, तू पतित ही है, तेरा कभी उद्धार भी नहीं होगा, तूने कर्म कैसे हैं तेरे? रात को होता है 12-1 बजे, सुबह उठता है 8 बजे, सूर्यवंशी बन गया है चंद्रवंशी की बजाय, सूरज आ जाता है फिर तो उठता है, ऐसे व्यक्ति पे भगवान कृपा नहीं करते हैं क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करना चाह रहा है। तो पहली चीज है श्रद्धा, हमें भगवान के बताए गए शास्त्र पर श्रद्धा होनी चाहिए। भागवत में कई लोग बोलते हैं किताबी भाषा है ना, इस किताबों पे लिखा हुआ हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, इस पे भरोसा करना पड़ेगा, जो भरोसा करेगा वो व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए तैयार होगा। उसके लिए पहली चीज है सीढ़ी क्या है, श्रद्धा, और दूसरी है पता है क्या, दूसरी क्या चीज चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, क्या चाहिए? डिटर्मिनेशन दूर है, डिटर्मिनेशन उससे भी पहले एक चीज चाहिए, भक्तों का संग। संग में तो रोज ही रह रहे हो आप लोग, कहाँ आगे बढ़ पाते हैं हम लोग, क्या है? हाँ जी, करेक्ट इंस्ट्रक्शन, ओके, और उत्साह, हाँ शरणागति उत्साह, ये सारी चीजों के पीछे भी एक जड़ है, मूल रूट कॉज, ईगरनेस उत्साह हो गया वो तो, और भी उसके नीचे एक जड़ है, उत्साह के नीचे भी एक जड़ है। जैसे ये तो आप डंडी तक पहुंच गए जहां पे पत्तियां दिख रही हैं, फल से नीचे आ गए, डाल से नीचे, जड़ में जाना है। रूट कॉज क्या है हमारी भक्ति में न आगे प्रगति कर पाने की, रूट क्या है? लव तो ऊपर का स्थान है, इच्छा, इच्छा द्वेष समुत्थेना, भगवान ने क्या कहा जिसके अंदर क्या है, अगर भक्ति में कोई नहीं बढ़ पा रहा और वो ड्रामेबाजी कर रहा है ना, मैं कर नहीं पा रहा प्रभु जी, फंसा हुआ हूँ ग्रस्त आश्रम में, आप एक बार मेरी जगह आकर देखो, बहुत कष्ट है, सारा कष्ट ब्रह्मांड का मेरे पास ही है, आपको मालूम ही नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति बोल रहा है ना, उसके अंदर क्या नहीं है, इच्छा। बस जिसके पास इच्छा है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ, ऐसे नहीं लिखा गया ये शास्त्र के, ये फिलोसोफर्स के, ये स्लोगन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी के जीवन में एक चीज थी, इच्छा, गुरु की सेवा करने की इच्छा, इच्छा थी, श्रद्धा थी, दोनों चीजें मिल जाए ना तो हम विश्व ब्रह्मांड कुछ भी कर सकते हैं, पहली चीज इच्छा, दूसरी, कई बार ऐसा होता है, मैंने अनुभव किया अपने निजी जीवन में, कोई कार्य नहीं हो पा रहा तो हम आकर के बेसिक रूट कॉज एनालिसिस करते हैं ना, क्यों नहीं हो पाया, उसका जड़ क्या था, पता चलता मेरी इच्छा ही नहीं थी करने की, उन्होंने बोला मैं चल दिया सेवा करने के, हाँ प्रभु जी पहुंच जाएंगे, इसलिए सेवा बिगड़ गई, क्योंकि मन में इच्छा ही नहीं। जिस इच्छा को मैं करना चाहता हूँ, मान लीजिए आपने बोला आइए प्रभु जी छिपीवाड़ा में कथा करने के लिए, मेरी इच्छा है कि मुझे करनी है, तो उसकी तैयारी करूंगा, 7:35 में पहुंच गया, इतना कोहरा था परिवार को लेकर के, इच्छा है तो कार्य होगा, जब इच्छा नहीं है वहां पर कार्यक्रम में 9 बजे 10 बजे पहुंचेंगे एंड में प्रसाद में टाइम पे, क्यों, क्योंकि इच्छा नहीं है जाने, बस औपचारिकता के रूप में जाना है। तो जो भी कार्य में हम ढीले हैं वो आप देख लीजिए उसके पीछे इच्छा है। अगर जब सुबह नहीं हो पा रहा है, सुबह नहीं उठा जा रहा है, तो और कुछ नहीं है, ना तो आलस है ना कुछ है, बस एक ही चीज है, इच्छा नहीं है, डिजायर होगी तो काम होगा आपके जीवन में। आप बड़े आदमी बनना चाहते हैं इसलिए तो रात दिन मेहनत करते हैं, इच्छा है कि मैं बड़ा आदमी बनूं, मेरे पास एक गाड़ी हो, अगर इच्छा ही नहीं है तो आदमी नौकरी करने को जाएगा, काम पर क्यों जाएगा, तो इसलिए काम धंधे पे जाने के लिए भी बेसिक रिक्वायरमेंट है इच्छा। इच्छा किसी व्यक्ति में रहे तो व्यक्ति इस तरह से आगे बढ़ सकता है। तो आज बहुत ही शुद्ध दिवस है, आज बोलते हैं त्रिस्पर्शा, त्रिस्पर्श एकादशी है, तीन चीजों ने इसको स्पर्श किया है। नारद जी से महादेव भगवान शिव पूछते हैं कि भगवान ये त्रिस्पर्शा का क्या अर्थ होता है जो आज है स्पेशल एकादशी। भगवान कहते हैं ये किसी भी महीने में है, नारद मुनि महादेव वर्णन कर रहे हैं किसी भी महीने में आती है, क्योंकि वैष्णवानाम यथाम शंभु, शंभु जो है शिव सबसे बड़े वैष्णव है, एकादशी पालन करते हैं, है ना, तो ऐसे वैष्णव शिव कहते हैं नारद मुनि को, पद्म पुराण में वर्णन है कि त्रिस्पर्शा का मतलब है जिस दिन एकादशी द्वादशी और त्रयोदशी एक ही दिन में आ जाए। जैसे आज का जो दिन है, आज हम 12 बजे तक सुबह एकादशी रखेंगे, 12 बजे तक, 12 से रात्रि 7 बजे तक द्वादशी है, और शाम को संध्या के बाद में गौरात्री के बाद में त्रयोदशी लग जाएगी। इसीलिए आने वाले जो दो फेस्टिवल्स हैं कल वरह द्वादशी और नित्यानंद त्रयोदशी, ये दोनों मिलकर एकादशी में ऐसे आ गए, एंटर कर गए। तो ये साल में कभी कभी ऐसा होता है, कई जन्मों में घूमने के बाद जब युग पर्यंतर घूमता है ना, ये हर महीने का रेगुलर प्रोसेस नहीं है, तो आज जो भाग्यशाली लोग त्रिस्पर्शा एकादशी पर भागवत कथा सुनने आ गए, जप किया जिन्होंने और यहाँ आने के लिए जल्दी उठ गए, और जो कि प्रभुपाद जी के स्थान पर आ गए, तो आज क्या होने वाला है, आपका कल्याण होने वाला है। हरी 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 बोल। तो कहते हैं कि 100 करोड़ तीर्थ, कितना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पद्म पुराण में लिखा है 100 करोड़ तीर्थ, बोल पाएंगे करोड़, 100 करोड़ तीर्थ में जाने पर जो फल प्राप्त होता है वो त्रिस्पर्श एकादशी के पालन से ही प्राप्त होता है। हरी हरी। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, कहते हैं स्मरतो हरि स पापानी यदि नित्यम जनार्दन। हे जनार्दन, अगर कोई नित्य आपका स्मरण करता हो लेकिन अगर वो स्त्री स्पर्श एकादशी के दिन आपका स्पेशल स्मरण करे तो क्या होता है, स्मरतो हरि स पापानी, जितने भी पाप है हरि स्मरण मात्र से ही नष्ट हो सकते हैं। तो आज कोशिश करें हरि का अधिक से अधिक स्मरण बना रहे। उपवास का मतलब ही होता है, उप मतलब नजदीक, उपवास, वास मतलब रहना, भगवान के नजदीक रहना। तो कई लोगों ने उसको नियम बना लिया, एकादशी के दिन बाल नहीं काटेंगे, एकादशी के दिन कपड़े नहीं धोएंगे, एकादशी के दिन हम सब्जी नहीं बनाएंगे, एकादशी के दिन अन्न नहीं पकाएंगे, क्या करेंगे, और टीवी देखेंगे, टाइम को वेस्ट करेंगे अपने। एकादशी का मतलब है उपवास, उप मतलब नजदीक, वास मतलब भगवान के पास रहना। उपवास में अधिक से अधिक भगवान के पास रहे, इसलिए ये नियम शास्त्र में दिए गए कि अपना समय बाल काटने में मत लगाओ, अपना समय दाढ़ी बनाने में मत लगाओ, अपना समय जो है वो अन्न पकाने में मत लगाओ, अपने समय कपड़े धोने में मत लगाओ, अपना समय किस में लगाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ऐसे ही है, पद्म पुराण में एक सुंदर कथा आती है जिससे पता चलता है गृहस्थ आश्रम के अंदर एकादशी पालन करने का क्या फल मिलता है। और ये एकादशी देवी कहां से प्रकट हो जाती है, मालूम है आपको एकादशी कहां से प्रकट होती है? कई लोग बोलते हैं कथा में एकादशी देवी भगवान से प्रकट हुई और फिर उन्होंने एक राक्षस का वध किया, क्या नाम था उसका, मुर नामक राक्षस, जिसके कारण भगवान मुर आरी बन जाते हैं ना, मुर आरी बन जाते हैं, मुर आरी, मुर के आरी, मुर के दुश्मन। तो इस प्रकार के मुरारी भगवान जो है उनके शरीर से एक स्त्री निकलती है जिसका नाम है एकादशी। परंतु पद्म पुराण में एक स्पेशल कथा आती है जिसमें बताते हैं समुद्र मंथन के दौरान एकादशी देवी प्रकट होती है। तो कैसे होती है उसके बारे में वर्णन करते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि जो है ना वो इंद्रलोक को गए थे, इंद्रलोक में पहुंच गए और वहां पर इंद्र एरावत हाथी पर बैठ करके अपने नंदनवन की ओर जा रहा था। उन्होंने एक अपना स्पेशल गार्डन बनाया, जैसे आपका मुगल गार्डन है, ऐसे द्वारका में आपने बनाया गार्डन, छिपीवाड़ा के आसपास भी गार्डन्स है, यहाँ कनॉट प्लेस, ऐसे गार्डन्स, ऐसे इंद्रलोक जो है अमरावती उसकी कैपिटल है, इंद्रलोक पूरा है उसमें से उसकी कैपिटल है अमरावती, उस अमरावती में एक स्पेशल गार्डन है जिसका नाम है नंदनवन। अभी आप स्वर्ग जा सकेंगे ना, स्वर्गवासी होंगे तो आप देख पाएंगे उसको, लेकिन अगर वैकुंठवासी होंगे तो आप नहीं देख पाएंगे उसको। तो आप क्या होना चाहते हैं, तुम्हारे नंदनवन हम देखना नहीं चाहते, ठीक है। तो इस तरह से नंदनवन की ओर जा रहा था, दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा ऋषि को ऐसा माला मिला था, ये जो माला है ना ये साधारण नहीं है, कई बार क्या होता है माला निकाल करके दे देते हैं किसी व्यक्ति को, हरे कृष्णा प्रभु जी ये लीजिए ये माला। तो प्रभु जी क्या करते हैं, प्रभु जी ऐसे करते हैं उसके बाद में उतार देते हैं, उतार करके ऐसे फेंक देते हैं, और ये फेंक जाने से जो ये निर्माल्य है भगवान के शरीर से स्पर्श होकर भगवान के विग्रह को छूकर के आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका एक पत्ता भी गिर जाए ना तो अगर ये पांव के नीचे आए तो अपराध बनता है, इसलिए माला उसी को देना चाहिए जो माला का योग्य हो। लेकिन आजकल हम मंदिर में प्रचार कार्य के लिए मालाओं को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नए नए लोगों को वो पॉलिथिन में डाल के ले जाते हैं, बाद में डस्टबिन में डाल देते हैं, उसका अपराध उसको लगेगा जो व्यक्ति माला देता है। तो इसलिए देने से पहले हिजलिनस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक बार मेरे को पर्सनली मिले थे, महाराज मेरे को बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा सा माला मंगला आरती का महाराज ने पहना था, तो महाराज ने इसे देखते ही मेरे को माला निकाल के डाला, जैसे महाराज माला डालने लगे महाराज रुक गए, फिर महाराज कहते हैं क्या आप इसका ख्याल रख पाओगे, तो मैंने कहा महाराज प्रयास करूंगा, जाओ एक पॉलीथिन लेके आओ, बहुत बड़ा माला था ना गुलाब का, इतना बड़ा माला, गया दौड़ करके पॉलीथिन बैग लेके आया, मैंने महाराज ने निकाला फिर गले में डाला, फिर बोले अभी निकाल कर इसमें डालो और इसको घर ले जाओ, ध्यान से रखना इसका एक भी पत्ता गिरना नहीं चाहिए, खुद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा दिया गया आदेश है। तो ऐसा दुर्वासा ऋषि ने माला निकाल के दिया था और किसको दे दिया, इंद्र, लीडर्स ऑफ द देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवताओं के लीडर है इंद्र, उनके गले में दिया, इंद्र ने निकाल करके अपने हाथी को दे दिया। कभी भी हम करते हैं ना निकाल कर अपने बच्चे को दे देते हैं, बच्चा वो फेंकता रहता है, उसका अपराध माँ बाप को बनेगा, माँ बाप के ऊपर उसका अपराध बनता है, जिन्होंने माला पहनाया उन पर अपराध लगता है। इस तरह से उन्होंने हाथी को वो अपना दे दिया माला और हाथी ने सोन से निकालकर एरावत ने जमीन पर डाला और नंदनवन के आकर्षक पुष्पों की सुगंध देने के लिए माला के ऊपर पांव रखकर नंदनवन में प्रवेश कर गया। अभी क्या हो गया, इंद्र को लक्ष्मी जी ने श्राप दिया, स्वयं नारायण की पत्नी लक्ष्मी जी कहती है कभी तीनों लोकों में मैं तुमको क्या कर दूंगी, निर्धन बना दूंगी, कहीं पर भी एक भी इंच तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। सभी देवी देवता परेशान, असुर परेशान, करिए क्या हुआ, अचानक से श्रीहीन हो गया त्रिलोक, कहां चला गया सारा पैसा। कहा इंद्र जो तुम्हारा लीडर है ना, उसने अपराध किया है। लीडर की बहुत जिम्मेदारी होती है, अगर वो अपराधी होगा तो उसके अनुगत लोग भी अपराधी होंगे, अगर वो भक्त होगा तो उसके अनुगत भी भक्त होंगे, है ना। इसलिए बहुत जरूरी है, लीडरशिप लेना इज नॉट सो इजी। लीडर बनने के पहले याद रखना चाहिए, आई एम नॉट अ लीडर, आई एम अ सर्वेंट लीडर। मैं नेता नहीं हूं, मैं सेवक नेता हूं, है ना, भक्तों का सेवक हूं, इसलिए मैं उनका नेतृत्व करता हूं। किसी के मन में भावना आ गई, मैं नेता हूं, जो चाहूंगा करवा लूंगा, ये मेरे अनुगत है, बस वो फंसा और नीचे वाले भी फंसे, सबके सब, लालची गुरु नकली चेला, दोनों नरक में छेलम छेला, दोनों जाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गुरु है वो हमेशा ये सोचे मैं कृष्ण का दास हूं और अपने को गुरु का रिप्रेजेंटेटिव मानते हुए सेवा करें। इस प्रकार से जब त्रिहीन हो गया तीन लोक, सभी असुर और देवता भगवान के पास जाते और कहते हे प्रभु हमारी मदद कर दीजिए। तो भगवान आप जानते हैं समुद्र मंथन करने के लिए कहते हैं, क्षीर सागर का मंथन करने के लिए भगवान कहते हैं मंद्राचल का पर्वत बनाओ, वास्तुकी नाग की रस्सी बनाओ। वास्तुकी नाग कहता है प्रभु मैं आपकी सेवा में आया हूं, इधर से असुर खींचेंगे इधर से देवता खींचेंगे, मेरे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं। भगवान की चिंता क्यों करता है, सबके हृदय में तो मैं ही बैठा हूं, मैं अपने को विस्तारित कर दूंगा पूरे शरीर में, कितना भी खींचेंगे ना इलास्टिक बैंड टूट जाएगा तो कभी नहीं टूटेगा, चल सेवा कर अपना। तो इस तरह से उन्होंने सेवा में लगाया किसको, वासुकी नाग को। इधर आ गए असुर एक साइड और एक साइड आ गए देवता। भगवान ने देवताओं से कहा तुम मांगना मुंह और असुरों से कहा तुम मांगना पूछ। तो है ना, देवता असुर तो वही है जो भगवान की बात को मानते नहीं है, और देवता कौन है जो भगवान की बात को, ऐसा नहीं है कि असुर मतलब जिसकी काली काली मूछें हो, जिसके सींग हो, जो कि काले कपड़े पहनता हो वो असुर है, नहीं, वो असुर है जो भगवान की बात को। भगवान ने कहा ग्रस्त आश्रम में सर सन्यासी च योगी च, इस बात को जो नहीं मानता वो कौन है, असुर। जो ये नहीं मानता सर्वधर्मान परित्याज मामेकम शरणम व्रज, वो कौन है, असुर है। तो इसीलिए हम दिखने में सुंदर हो सकते हैं, रेमंड सूट, रेमंड्स का सूट पहनते हैं, क्लीन, आई एम अ डिवोटी, लेकिन आई एम नॉट सरेंडर टू कृष्णा, आई एम अ डीमन, मैं राक्षस हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं राक्षस हूं कि देवता हूं, ये देखना पड़ेगा। ऐसे राक्षसों ने एक साइड से खींचने के लिए बोले अच्छा तुम मुंह लोगे, ये चीटिंग करते हैं, विष्णु सदा तुम्हें गाइड करते हैं। क्यों गाइड करते हैं, क्योंकि वो गाइडेंस लेते हैं, गाइड भी भगवान उन्हीं को करते हैं जो गाइडेंस, हम भी उन्हीं को गाइड करते हैं, टीचर्स भी उन्हीं को गाइड करते हैं जो गाइडेंस लेते हैं। अपनी मर्जी से गाइडेंस देना मतलब कि अपने लिए एक बहुत बड़ा डैमेज कर लेना, है ना। कहते हैं सीख दीजिए भाई जाए सीख सुवाए, सीख दीजिए बांदरा को तो बया का घर जाए। सुना है आपने कभी, बंदर था एक, है ना, और एक बया नाम की चिड़िया थी, वो चिड़िया ऐसा घर बनाती है पूरा ऐसे सर्कल बना के और उसके अंदर जुगनू लगा देती है, लाइट बल्ब भी लगाती है सीएफएल, और ना लाइट कर लेती है पूरा ड्राइंग रूम के अंदर, और गेस्ट आता है तो उसमें सीएफएल वाली जगह बिठाती है, जुगनू लगाए और जुगनू ऐसे से टिंगलिंग 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 करते हैं, बल्ब होता है पूरी बया का घर, स्पेशल बिकता है मार्केट में 100 रुपए 200 रुपए में जब वो छोड़ जाती है। तो ऐसा बया का घर था, उसने अपने भाई बंदर से कहा देखिए बंदर भाई बारिश आ रही है फिर सर्दी आएगी, मैंने इतना सुंदर घर बनाया है आप भी बना लीजिए, मैंने अंडे रखे हैं आप भी अपने बच्चों को रखिए। बंदर को क्या आया, सीख मिली, बंदर को गुस्सा आया, ओह टीचिंग ज्यादा एडवांस नॉलेज, ओ लेके टुकड़ा टुकड़ा कर दिया बया का घर, कहा ले तेरे अंडे, फेंक दिए अंडे टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, क्या हुआ, सीख दीजिए बाए जाए सीख, जिसको सीख समझ में आती है, सीख दीजिए बांदरा को तो बया का घर, यही सीखा है। तो इसलिए गाइडेंस भी उसी को दी जाती है, लोग बोलते हैं अरे हमको गाइडेंस ही नहीं देते मंदिर में, ना कोई हमको पूछता ही नहीं, अरे तुम पूछवाना ही नहीं चाहते इसलिए तुमको कोई पूछता नहीं, वरना फोन नंबर्स हैं डिवोटीज के, आपको अगर चाहिए गाइडेंस तो आपको खुद लेना पड़ेगा, आपके घर पे आकर के कोई गाइडेंस नहीं देता है। आप ही अलग रहना चाहते हैं भक्तों से तो कौन आपको पकड़ लेगा, आप घर पे ताला डाल देंगे तो कोई ताला तोड़कर थोड़ी भक्ति में ले आएगा आपको, इच्छा आपको करनी पड़ेगी। इस तरह से इस राक्षस और देवताओं ने समुद्र मंथन किया, और समुद्र मंथन करते ही क्या हुआ, सबसे पहले उस दिन था शुद्ध एकादशी का दिन, कौन सा दिन था, एकादशी का दिन था जो आज है। एकादशी का दिन था और आज के दिन समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन प्रारंभ होते ही उसमें से सबसे पहले क्षीर सागर पर सारा हलाहल जहर आ गया पूरे क्षीर सागर पे। हमारे समुद्र जो है ना इनसे भी 10 गुना 100 गुना बड़ा समुद्र क्षीर सागर, दूध का सागर, और उसके ऊपर क्या आ गया था? जहर। ऐसे हमारे साथ भी होता है। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी पहले जप नहीं करता था ना तो जीवन आनंद में था, बहुत खुश रहता था, जब से जप शुरू किया है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, इतना चिंता में रहता हूँ, टेंशन में रहता हूँ, पहले नहीं रहता था, ऐसा क्या हो गया? मैं तो जितना जितना शरण जाता जा रहा हूँ उतना उतना टेंशन बढ़ती जा रही है। घर वाले बोलते हैं, पड़ोसी बोलते हैं, ऑफिस वाले बोलते हैं, तू बदल गया है, तू बदल गया है, तू पागल हो गया है, तू ढोंगी हो गया है, लोग ऐसे बोलते हैं। ये सब सुनना पड़ रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि क्षीर सागर का क्या शुरू हो गया है? मंथन। और मंथन जब शुरू होता है तो सबसे पहले क्या निकलता है? विष, है ना? तो विष जब निकलता है तो उस विष को क्या किया जाता है? कौन पी जाते हैं? भक्त पी जाते हैं। और सबसे बड़े भक्त कौन है? शिवजी। शिवजी कहते हैं, भगवान कहते हैं चलो शिव सेवा में लगो, शिवजी कहते हैं, पार्वती कहती है इनका क्या होगा, जब ये पिएंगे जहर तो समाप्त हो जाएंगे। पार्वती को कहते हैं कृष्ण, कहते हैं विष्णु चिंता मत करो, मैं हृदय में बैठा हूं, यहाँ हृदय के गले के एक बूंद नीचे उतरने नहीं दूंगा, वहीं का वहीं हाथ लगा के रोक दूंगा, लेकिन शिव को सेवा में लगने दो। बहुत बड़ी टीचिंग है। हमको लगता है सेवा हम करते हैं, लेकिन करने वाले कौन है? सर्व कारण कारणम कृष्ण, लेकिन हमको लगता है सेवक हम है, हम सेवा करते हैं, आई एम द बेस्ट। यही गलती है और इसीलिए जहर बढ़ता चला जा रहा है हमारे अंदर, हमारे कर्मों में, हमारी भाषा में, हमारी सेवाओं। तो उस जल का क्या करना चाहिए? शिव ने क्या किया? उसको पान कर लिया। कहते हैं अच्युत अनंत गोविंद इति नामत्रस्य हरे यो जपेत प्रयतो भक्त्या प्राणवाधम नमो अंतकम तस्या मृत्यु भयम् नास्ति विषरोग ग्रिजम महता नामत्रयम् महामंत्रम जपेत प्रयतात्मवान। यहां भी आया है नामत्रस्य महामंत्रम। जिस प्रकार से जल के ऊपर आने वाले क्षीर सागर पर आने वाले जहर को कौन पी गए थे? शिव पी गए थे। उसी प्रकार से तस्य मृत्यु भयम् नास्ति, उस व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं सताएगा, वो मृत्यु से रहित हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा। जो क्या करेगा उसके जीवन से रोग चले जाएंगे, मतलब रोग भी चले जाते हैं जीवन से, अगर क्या करेगा? नाम त्रयम महामंत्रम जपेत प्रत आत्मवान। आत्मा के स्तर पर अगर कोई व्यक्ति क्या बोलेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से शिव जी के निकलने के बाद में शिव ने जहर को पी लिया। सारा जहर पीने के बाद कृष्ण ने हाथ लगा करके गले में रोक दिया, जहर की एक बूंद अंदर नहीं गई और शिव जी का गला कैसा चला गया? नीला पड़ गया। और जिसके कारण उनको क्या नाम मिला? नीलकंठ महादेव। देवों में सबसे उत्तम महादेव, वैष्णवों में सबसे उत्तम महादेव और नीलकंठ, कंठ नीला पड़ गया। लोग नीलकंठ की पूजा करने लगे, नीलकंठ महादेव की। तो शिव जी कहते हैं भगवान मैंने आपकी सेवा करी, मेरा नाम क्यों हो रहा है? मैं तो नाम चाहता नहीं हूं, क्योंकि भक्त अपनी नाम प्रतिष्ठा नहीं चाहता। भगवान ने कहा जो यशस्वी है, मैं यशस्वी हूं, यश में मेरे पास 6 ऐश्वर्य है, यश मैं यशस्वी हूं, तो मेरे साथ जुड़ने वाले भी कैसे हो जाते हैं, जो मेरी सेवा करते हैं वो कैसे हो जाते हैं। और उनके सबसे बड़े उदाहरण है जिस जगह हम बैठे, श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ऐसे स्थान पे थे, जब वो चांदनी चौक छत्तीवाड़ा में थे, एक दिन का प्रसाद पाने के लिए घर घर जाना पड़ता था। आज उन्हीं श्रील प्रभुपाद जी के यश के कारण, कृष्ण सेवा के कारण आज उनको 3 वक्त भोग लगता है, मूर्ति को, विग्रह को, है ना? प्रभुपाद जी साक्षात नहीं है, विग्रह के रूप में है, लेकिन फिर भी उनको क्या लग रहा है? भोग लग रहा है। लेकिन जब वो थे, जब उनकी सेवा थी, तब उस समय नहीं था। और इस प्रकार से भगवान कहते हैं जो यश में सेवा करता है वो यशस्वी हो जाता है, जो यशवान की सेवा करता है, और यशवान कौन है? कृष्ण। तो अगर आप सच में सेवा करेंगे ना कृष्ण की, आपका भी नाम होगा। लेकिन पहले बदनामी होती है थोड़ी सी, फिर उसके बाद नाम होता है। शुरुआत में बदनामी होती है, सहन करनी चाहिए, फिर बदनामी के बाद में नाम, क्योंकि जहर आएगा, वो जहर शिव जी पी जाएंगे, आपके भक्त पी जाएंगे। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए वो जाकर के भक्त को बता दो जिनसे आप गाइडेंस ले रहे हो, और फिर वो भक्त क्या करेंगे? जहर को पी जाएंगे और आपका कैसा हो जाएगा, स्वच्छ शीर सागर हो जाएगा, साफ। अब इसके बाद क्या निकलता है सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लक्ष्मी जी की एक बड़ी बहन है, जानते हैं लक्ष्मी की बड़ी बहन क्या नाम है, लक्ष्मी जी जानते हैं? लक्ष्मी जी की बड़ी बहन नहीं जानते हैं? लक्ष्मी जी की बड़ी बहन कौन है? सरस्वती बड़ी बहन है, आप गई थी शादी कराने, कौन है सर? लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, कुलक्ष्मी, हाँ कुलक्ष्मी, दरिद्रता उनकी बड़ी बहन है, दरिद्रता कुलक्ष्मी। लक्ष्मी कहती है कि जब ये समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सभी को इच्छा थी किसकी, लक्ष्मी जी की, इसीलिए श्रीहीन हुए थे, इसीलिए तो समुद्र मंथन किया। लेकिन सभी के सब देवता ग्रस्त थे, सभी के सब असुर ग्रस्त थे, लेकिन एक ने भगवान की बात मानी, एक ने भगवान की बात नहीं मानी। जिन्होंने बात नहीं मानी वो सांप की साइड पे आ गए, मुख फन की साइड पे, जिन्होंने बात मानी वो आ गए पूंछ की साइड पे, और सांप की फुंकार से सभी राक्षस काले पड़ गए और सभी देवता एज इट इज रहे जैसे वो थे, क्योंकि उन्होंने भगवान की बात मानी। पहली बार जहर निकला, जहर के दूसरी बार में कुलक्ष्मी कौन निकली, दरिद्रता, दरिद्र जो लक्ष्मी की बड़ी बहन है निकली, और क्या लेकर आई, अपने लाल रंग के वस्त्र पहन करके निकली थी, और यहां पर उन्होंने आज्ञा मांगी, हे प्रभु कृष्ण, विष्णु वहां विराजमान थे, मेरे लिए कोई सेवा? तो वो कहती है, वहां पर विष्णु कहते हैं हाँ, सभी देवता बोले आप जाओ अमंगल करो राक्षसों का। भगवान से पूछा क्या मैं राक्षसों का अमंगल करूं, उन्होंने कहा नहीं, इन पांच लोगों का अमंगल करूं। तो लिस्ट बताई है, सूची लिख सकते हैं, क्या सूची बताई है, कहा जिस ग्रस्त आश्रम में प्रतिदिन कलह हो, जिस घर में कलह, कलह मतलब कलेश, लड़ाई झगड़ा, जिस घर में कलह होता हो उस घर में दरिद्रता तुम जाना, दरिद्रता देवी को आदेश दिया विष्णु भगवान ने, है ना, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, ईगो की लड़ाई होती हो, मैं बेस्ट तुम बेस्ट, मैं आगे तुम पीछे, है ना, आसमां ऊपर मैं नीचे, ऐसे लोग गाना गाते हैं, कठोर वहां पर भाषा का प्रयोग किया जाता हो, भद्रता का व्यवहार होता हो, अभद्रता ना भद्रता, अभद्रता का व्यवहार होता हो, एक दूसरे के साथ में बुरा बुरा बोला जाता हो, ऐसी जगह तुम जाना। तीसरा वहां जाना जहां झूठ बोला जाता हो, जहां पर लोग झूठ बोलते हो, झूठ बोलते आप लोग, ये भी झूठ बोल रहे हैं इस बात में भी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ हाँ बोलिए, अभी तो सत्य बोलिए कम से कम, इसमें भी झूठ बोल रहे हैं, नहीं बोलते हैं। तो संध्या समय जो सोता हो, गौर आरती का समय होता है ना 7 बजे, उस समय जो सोता हो उसके घर में दरिद्रता तुम जाना। और आखिरी कहा, जो पांव को धोए बिना भगवान की सेवा में आचमन करता हो, आचमन करते हैं ना, पांव पर भी जल डालना चाहिए, पांव की अशुद्धि भी एक प्रकार की अशुद्धि है, तो पांव की अशुद्धि हो और आचमन करता हो ऐसी जगह 5 जगहों पर तुम जाना, जहां जहां पर क्या होता हो बताइए, क्या क्या होता हो 5? पहली जगह जहां पर कला होता हो, झगड़ा होता हो, कलयुग का प्रकोप हो, कला का युग कलयुग, जहां लड़ाई झगड़ा होता हो। दूसरा जहां पर हार्ड वर्ड्स, जहां पर क्या बोला जाता हो, अभद्रता का भाषा बोली जाती हो। तीसरा कहां जाना, जहां झूठ बोला जाता हो। चौथा कहां जाना, जहां पर शाम को सोया जाए, है ना। और पांचवा कहां जाना, जहां पर वैष्णव आचार सदाचार का पालन ना किया जाए, भगवान की सेवा के लिए पांव को न धोया जाए, हाथ को न धोया जाए। एक बार एक भक्त पूछ रहे थे क्यों धोना जरूरी है ना, तो बोलते हैं कि क्यों धोना नहीं जरूरी है क्यों धोना नहीं जरूरी है, ऐसा करके हमें पूछना चाहिए। तो इसके बाद में दरिद्रता के बाद वरुणी नाम की एक स्त्री निकलती है, जिनको बलराम जी धारण करते हैं, है ना। वरुणी जो है वो बलराम की पत्नी है, वरुणी। और उसके बाद में पांचवें चौथे नंबर पे लक्ष्मी जी निकल आती है। तो लक्ष्मी जो निकलती है वो जिस दिन निकलती है वो दिन होता है द्वादशी का दिन है। कौन सा दिन होता है? द्वादशी। अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, द्वादशी में पारण करने का समय क्यों दिया गया? फिक्स टाइम फॉर ब्रेकिंग द फास्ट, व्हाई, क्यों है कोई उत्तर? पारण का समय क्यों, कभी पूछा भी नहीं है ना, और लिखते भी नहीं। हाँ क्यों, व्हाई, रीजन, हर चीज का कारण होना चाहिए, कारण के बिना तो इस्कॉन स्टैंड ही नहीं करता, इस्कॉन के पीछे हर चीज का कारण है। बहुत एक आंसर अच्छा है वैसे ही उसके साथ, हाँ आने से तात्पर्य ठीक है। ऐसा है कि लक्ष्मी पाने के लिए व्रत किया गया वो दिन था एकादशी। एकादशी के दिन समुद्र मंथन किया और समय प्रारंभी लंबी होती है। समुद्र मंथन करते 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 दूसरी तिथि प्रवेश कर गई और कौन सी तिथि थी? द्वादशी। तब भगवान जब लक्ष्मी जी आई, जब लक्ष्मी आई गई, जब लक्ष्मी हीन होगा व्यक्ति तो कहां से अन्न पाएगा, है ना। बेचारे बोले ना, आजकल तो कैसा घर है, दिवाला निकला हुआ है, दिवाली के बिना हमारा दिवाला निकला है, ऐसे घर में खाना पीने के लिए स्थिति नहीं है। तो वो एकादशी के दिन सब लोग गए सेवा करने, उस दिन क्या करना चाहिए? कीर्तन। सबने विष्णु सेवा करी, सबने समुद्र मंथन किया। और हमारा समुद्र मंथन क्या है? जैसे वो मंदराचल पर्वत पे रस्सी घुमा रहे थे, ऐसे हमको हृदय रूपी मंदराचल पर एक रस्सी दी है वासुकी नाग की। कौन सी रस्सी दी है? माला, जप, जप माला, ये वासुकी नाग है हमारा। और इसके अंदर कौन प्रवेश कर गए हैं? भगवान ने वासुकी से कहा था, कौन प्रवेश कर जाएगा? मैं प्रवेश कर जाऊंगा। हमारी माला में कौन प्रवेश कर गया है? हरि नाम, अभिन्नत नाम नामिनो, नाम में और नाभि में भेद नहीं है। स्वयं कृष्ण जप माला में प्रवेश कर गए हैं। जितना जितना वासुकी नाग की रस्सी को घुमाओगे क्या होगा? उतना उतना समुद्र मंथन होगा। किस दिन प्रारंभ किया जाएगा? एकादशी के दिन। और कब समाप्त होगा? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन समुद्र समाप्त हुआ मंथन, लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। लक्ष्मी जी के प्रकट होना जो था वो सूर्य उदय के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रकट हुई और सभी देवताओं को कहा गया, जाओ अभी जाकर के क्या खा लो? अन्न प्रसाद, बहुत मेहनत की है। तो इसलिए एकादशी को फास्टिंग होता है, जप माला घुमाई जाती है, और द्वादशी को लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो उनका ऑनर किया जाता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वी ऑनर एकादशी बाय फास्टिंग, वी ऑनर द्वादशी बाय फीस्टिंग। सो इट्स एन ऑनर बिकॉज द्वादशी इज ऑल्सो अ लेडी, इज अ पर्सोनिफाइड वुमन, वो भी एक स्त्री रूपा है। जैसे एकादशी देवी है ऐसी द्वादशी देवी है। और आज बड़ा स्पेशल दिन है क्योंकि एकादशी देवी, द्वादशी देवी और त्रयोदशी देवी तीनों आकर के एक ही दिन में आज आपको व्रत का फल दे रही है। और आज जो फास्टिंग करेंगे, ज्यादा जप करेंगे, तीन देवी का फल इकट्ठा मिलेगा। त्रिदेवी, नॉट श्रीदेवी, इट्स त्रिदेवी। हाँ, कई लोग उस दिन बहुत पूछ रहे थे, प्रभु जी वो श्रीदेवी कब आता है? मैं कहा श्रीदेवी नहीं होता है, त्रिदेवी होता है। श्रीदेवी कब आता है? त्रिस्पर्शा को त्रिदेवी बोलते हैं। तो पूछा था त्रिदेवी कब आता है? मैं कहा श्रीदेवी नहीं, त्रिदेवी आता है। तो इस तरह से तो आज का जो दिन है, आज की एकादशी को जया एकादशी या फिर भेमी एकादशी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछे जाते हैं कृष्ण भगवान से। कृष्ण से पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज कि हे प्रभु, आपने इस एकादशी को इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाया? गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण क्यों कर दिया एकादशी का दिन? कहा क्योंकि गृहस्थ आदमी जो है ना वो ज्यादा भजन साधन नहीं करता। एकादशी के दिन उसको मैं मौका देता हूं कि इस दिन वो क्या करे? उपवास करे, मेरे पास रहे, ज्यादा मेरे स्मरण करे, ज्यादा शास्त्र पढ़े, ज्यादा कथा सुने। एकादशी के दिन कथा कितनी देर की होनी चाहिए? 6 घंटे की। अरे बाप, 6 घंटे नहीं, कितने दिन, कितनी देर होनी चाहिए? कम से कम 1 घंटे से अधिक होना चाहिए, ये बोलना है। उत्तर ये है, 1 घंटे से अधिक होना चाहिए। रोज की तरह टाइम बंद नहीं होना चाहिए। आज ज्यादा कथा कीर्तन हो, ज्यादा श्रवण हो, ज्यादा माला जप हो, है ना, ज्यादा प्रसाद नहीं पाए ऐसे करके। प्रभुपाद जी बोलते थे एकादशी मीन्स नो ईटिंग नो स्लीपिंग ओनली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। कई लोग हमारे साथ जाते हैं ना धाम यात्राओं पे, कहते प्रभु जी आप सोने ही नहीं देते हैं, 3 घंटे से अधिक किसी को सोने नहीं दिया, सारे के सारे कुछ बीमार होकर एडमिट हो जाते हैं। कहते 3 घंटे से अधिक आप सोने नहीं देते, क्योंकि धाम में एकादशी के दिन सोना वर्जित है। जो ज्यादा सोएगा वो ज्यादा खोएगा, जो ज्यादा जागेगा वो ज्यादा पाएगा। क्या पाना है? भक्ति। तो भक्ति पाने के लिए ज्यादा जगना चाहिए। इसलिए मैं जाने ही नहीं देता किसी को घर पे जो वो सोए घर जाकर। मान लीजिए सुबह मंगला आरती आए, 8 बजे आ गए, प्रसाद पाया, जप माला भी 16 पूरी हो गई, फिर आदमी क्या बोलेगा? बोले अब ठंड पड़ रही है, घर जाके रजाई ओढ़ के सोता। एकादशी के दिन सोएगा तो उसको अपराध बनेगा। इसलिए बहुत बीमार ना हो तब तक उसको सोना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से कृष्ण कहते हैं आज की एकादशी जो है वो महत्वपूर्ण है, पाप नाशनी एकादशी है, आज पापों को नाश करने वाली है। इंद्र के नंदन वन में, फिर से इस कथा में नंदन वन आता है, इंद्र के नंदन वन में 50 करोड़ गंधर्व गान कर रहे थे। 50 करोड़, कितने? 50 करोड़। हमारे आते कभी डिवोटीज 50 करोड़ इंद्र के पास आ जाते हैं? कांग्रेगेशन बहुत बड़ा है उसका, इंद्र क्या? गंधर्व। गंधर्व वो है जो म्यूजिक प्ले करते हैं। हमारे कॉन्ग्रीगेशन में कुछ मृदंग बजाते हैं, कुछ करताल बजाते हैं, और ज्यादातर नहीं बजाते, और जो बजाते हैं वो भी ऑफ बीट बजाते हैं, म्यूजिकल नहीं बजाते। गंधर्व एकदम पर्टिकुलर ऐसा सुंदर वादन बजाते हैं, इंद्र को मनोरंजन देते हैं। उसके नंदन वन में 50 करोड़ गंधर्व गान कर रहे थे, और वहां पर उनके कुछ इंपॉर्टेंट डिवोटीज थे, उसमें से एक थे पुष्पदंत, जिनके पुत्र थे माल्यवान, और एक इंपॉर्टेंट डिवोटी थे चित्रसेन, उनके एक पुत्री थी जिसका नाम था पुष्पवंती, है ना। तो पहले थे पुष्पदंत, उनका पुत्र था माल्यवान, और चित्रसेन थे, उनकी पुत्री थी पुष्पवंती, है ना। समझ गए? कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड, इजी तो इजी है। माल्यवान और पुष्पवंती जो थे, ये दोनों ही सुंदर थे गान करने में, नृत्य करने में, बजाने में। और क्या हुआ, जब इंद्र की सेवा में लगे थे, गाना बजाना चल रहा था, माल्यवान को पुष्पवंती से लव एट फर्स्ट साइट हो गया, और पुष्पवंती को माल्यवान से लव एट फर्स्ट साइट हो गया, प्रेम आ गया। अभी प्रेम जहां आ जाता है ना, वह सेवा डिस्टर्ब होती है कि नहीं होती है? आप किसी एक को एक्स्ट्रा फेवर करने लग जाओगे तो बाकी सेवा डिस्टर्ब हो जाती है। इस तरह से पुष्पवंती माल्यवान एक दूसरे के साथ नजरें मिला रहे थे, और उनका नृत्य बिगड़ गया। ताल होती है ना, स्टेप वन स्टेप टू, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वो हो रहा था वन टू फोर, वन टू फोर, सारे बोल रहे हमें सिखाया तो था वन टू थ्री, जा रहा है फोर पे। तो जब सारा ग्रुप से डिस्टर्बेंस हुआ, इंद्र को गुस्सा आया, इंद्र ने श्राप दिया कि अरे तुम मेरे मनोरंजन में एक बनते हो अवरोधक, जाओ तुम प्रेत बन जाओ। क्या बन जाओ? प्रेत बना दिया। सोचो, गंधर्व लोक से भी प्रेत बनना पड़ सकता है, और प्रेत नाम की एक योनि होती है। कई लोग तो ऐसा सोचते हैं कि प्रेत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती है ना। कल हम वर्णन कर रहे थे, जैसे हम लोगों के मंदिर में इष्ट गोष्ठी होती है, ऐसे ही भूतों की गोष्ठ गोष्ठी होती है। गोष्ठ गोष्ठी, गोष्ठ मिलते हैं, और सारे प्रेत मिलकर के चर्चा करते हैं कौन से पुरुष को पकड़ा जाए। तो सारे प्रेत बोलते हैं, उसको पकड़ो जो एकादशी का पालन ना करता हो, उसको पकड़ो जो जप ना करता हो, उसको पकड़ो जो भजन ना करता हो। और ये बात सच्चाई की है। आपको लगेगा कि मैं ऐसे मजाक कर रहा हूं, प्रभु जी एग्जैचुरेट करके बोल रहे हैं। एक भक्त ने स्वयं इसका वर्णन किया बॉम्बे मंदिर इस्कॉन में आकर के। उन्होंने कहा, मैं पुलिस कमिश्नर था, और मुझे एक गांव में भेज दिया गया, और उस गांव में मुझे बोला गया कि आप कमिश्नर बन के जाइए, जिला अधिकारी। जिला अधिकारी बन के मैं उस जगह गया, जो घर मुझे दिया गया था, उस घर में जैसे ही मैंने वो कमरा खोला, देखा गंदा पुराना कमरा है, और एक जिला अधिकारी को दे दिया गया। और फिर मेरी पोस्टिंग हुई थी, वो भक्त बोल रहे थे कि जब मैं भक्त नहीं था, मैं उस स्थान पे पहुंचा, पूरे में जाले जाले मिट्टी थी, मैंने झाड़ू लेकर सफाई करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन सफाई करने के बाद जब मैं रात्रि शयन करने लगा तो हंसने की आवाज आ रही थी इसी करके। तो वो घबरा गए, बोले कौन है, सामने आइए, क्योंकि ये मंदिर जाया करते थे इस्कॉन जुहू, तो इनके पास में कंठी माला थी, जिसको देखकर वो इन पर चढ़ा नहीं, लेकिन वो बोलता है, कहता है, हम लोग आज बहुत खुश हैं। कहा, क्यों खुश हो, कौन हो? कहा, हम प्रेत हैं, इस घर में रहते थे, आपको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आप कंठी धारण किए हैं, आप भक्त हैं, लेकिन हम यहाँ पर पासी में एक व्यक्ति की आज शादी है, और शादी के दिन उनका क्या होता है, शादी के दिन ही आज उनकी मृत्यु का दिन भी है, वो जब घोड़ी नहीं चढ़ेगा इससे पहले वो सूली चढ़ जाएगा, मृत्यु सैया पर चढ़ जाएगा, आज इसका निर्णय है, इसलिए यमदूत आए हुए हैं और उन्होंने हमको ये बताया है, और हम लोग मिलकर के खुश हैं कि वो मरने के बाद में हमारे ग्रुप में मैच मिल जाने, कांग्रीगेशन बढ़ने वाला भूतों का। तो बड़े खुश थे, हमारा एक और आश्रय क्लास मेंबर बढ़ जाएगा, एक और IGF IVF बढ़ जाएगा, बड़े खुश थे वो। और इतने में उन्होंने कहा, ऐसा क्यों कि वो आपके साथ ही जुड़ेगा? कहा, उसके कर्म ऐसे हैं, हम जानते हैं ना प्रेत क्यों बने, हमने कैसे काम किए। कहा, वो भी ऐसा ही है, शादी कर रहा है लेकिन कर्म बड़े खराब है, हमारे साथ ही जुड़ेगा। थोड़ी बात वो बात खत्म हो गई, अपने जिला अधिकारी कार्यक्रम में चले गए। रात को लौट करके रोने की आवाज आ रही थी, रो रहे, कल तो हंस रहे थे। तो फिर इन्होंने पूछा कि कौन है, कहाँ है, रो क्यों रहे हो? फिर प्रेत कहते हैं, हम वही जो कल थे। रो क्यों रहे हो? बोले, रो इसलिए रहे हैं, हमारा आदमी जो था वो भगवत धाम चला गया, हमारी गोष्ट में जो आना वाला था गोष्ठ गोष्ठी में, वो इष्ट गोष्ठी में चला गया भगवत धाम। कैसे कैसे हो गया? कहा, मुझे नहीं पता था जो मरने वाला है वो राजस्थानी है। राजस्थान जो है ना, राजस्थान में एक परंपरा है, दूल्हा जो होता है शादी के लिए जाता है ना, वो व्रत रखता है, उस दिन पूरा दिन कुछ नहीं खाएगा, जब तक वरमाला नहीं पहन लेगा तब तक पानी भी ग्रहण नहीं करता है, निर्जला। और उस दिन एकादशी थी, और कौन सी एकादशी थी? शुद्ध एकादशी। शुद्ध एकादशी के दिन उसका विवाह हो रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, वो नाच रहा था और भगवान का एक फोटो लगा हुआ था। भगवान सोच रहे थे एकादशी में नृत्य कर रहा है, एकादशी में नृत्य कर रहा था निर्जला। इसने व्रत रखा और अनजाने में एक घोड़ी का पैर गिरा, जिसे गिरना था कारणवश घोड़ी से नीचे गिरा, सिर जमीन से टकराया, मृत्यु होते ही कहां चला गया? भगवत धाम। गोस्त देखते रह गए, भूत बोले अरे एकादशी का फल पा गया, और इसलिए हम रो रहे हैं कि हमारा व्यक्ति चला गया। तो ये व्रत योनि होती है। साक्षात उस भक्त ने बताया, मैंने वार्तालाप किया है। भक्त सिद्धार्थ महाराज के जीवन में भी प्रेत योनियां आई, प्रभुपाद जी के जीवन में भी पहला भक्त प्रेत बना था। तो इस तरह से प्रेत एक योनि है जिनके पूर्ण रूपेण संस्कार नहीं किए जाते, वो आत्माओं को प्रेत शरीर मिलता है जो कि ट्रांसपेरेंट बॉडी होता है, देखने में दिखेगा नहीं, कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट है ना, लेकिन चढ़ता किस पर है? तो उन्होंने पूछा भक्त ने उन प्रेत से कि भाई आपके एरिया में आता कौन है, आप किसको बोलते हो? कहा अभी यमदूत आएंगे ना, वो आपको वर्णन करेंगे। कहा हमें तो दिखेंगे नहीं, हम तो भौतिक शरीर में, आप बताइए बात करके, क्योंकि हमें आपकी आवाज आ रही है। तो उन्होंने कहा कि यमदूतों के पास एक पूरी सूची है जो कि श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में यमराज के द्वारा दी गई है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है उसे तुरंत ले आना, जो व्यक्ति गोप्य चंदन तिलक नहीं लगाता उसे ले आना, जिसने कंठी धारण नहीं करी उसे ले आना, जिसने मंदिर में कभी प्रणाम नहीं किया उसे ले आना, जिसने भगवान का नाम जप इस जिह्वा से नहीं किया, खाली गोलगप्पे खाता रहा, गुलाब जामुन खाता रहा, उसे ले आना। ये सूची दी गई है यमराज के द्वारा यमदूतों को छठे स्कंद भागवतम में, अपनी मर्जी से नहीं बोलते हैं। तो जो चाहता है भगवत धाम जाना वो क्या पालन करेगा? एकादशी। इस प्रकार से उस माल्यवान और पुष्यवंती को श्राप दिया इंद्र ने, क्या बन जाओ? प्रेत बन जाओ। अभी प्रेत बन करके तड़पने लग गए, खाई कैसा ग्रस्त आश्रम है, हम हैं तो साथ में, शादी तो हो गई हमारी, लेकिन हम खा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, प्रेत योनि है, जो खाएंगे बाहर निकल जाएगा, ट्रांसपेरेंट बॉडी है ना, ऐसे खाया इधर से बाहर, पेट नहीं भर सकता, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति होती रहती है, भोग करने की अभिलाषा पूर्ण करते रहते हैं। शराबी के मुंह में जाएंगे, उसकी आत्मा पे ओवर पावर करेंगे, वो शराब पिएगा उससे शराबी का अपना आत्म तृप्ति करेंगे, और उसके बाद में प्यास तो भरेगी नहीं, फिर शरीर से निकल जाएंगे, फिर दूसरे के में चले जाएंगे, इसी तरह से ट्रांसफर करते रहते हैं, प्रेत घूमते रहते हैं, है ना। इसीलिए मंदिर में घंटे लगाए जाते हैं, घंटी बजाई जाती है, कहीं भक्त भगवान की सेवा के वक्त में कोई प्रेत आत्मा अंदर एंटर ना कर जाए, इसलिए मंदिर में शंख बजाए जाते हैं। कहते हैं जिस पल शंख बजता है, जिस पल घंटा बजता है, जिस पल घंटी बजती है पूजा में, वो कोई भी प्रेत आत्मा आसपास भी हो वो करोड़ों करोड़ों योजन दूर चली जाती है उस मंदिर के प्रांगण से जहां पर भगवान की सेवा हो। भगवान की सेवा अशुद्ध ना हो जाए, उसमें कोई प्रेत आकर थाली में ना बैठ जाए, इसलिए शंख और घंटी निरंतर बजाया जाता है। अशुद्ध आत्माएं बहुत सारी घूमती हैं, तो इसलिए इस प्रकार से वो गोस्त बन गए, प्रेत बन गए, और गोस्त बनकर प्रेत बनकर के अनजाने जगह पर घूमते रहे एक हिमालय पर्वत पर। और एक दिन वो जब तड़प रहे थे, तड़पते तड़पते उन्होंने एक ऋषि से पूछा, कहा कि हम क्या करें, हम बहुत परेशान है। कहा आप चिंता मत करो, आप लोग अभी ऐसी स्थिति में हो ना भजन कर सकते हो, अब इंतजार करो मनुष्य शरीर मिलने का, जब मनुष्य शरीर मिलेगा तभी आपका भजन बनेगा, तब तक ऐसे रहो भूत शरीर में। और लंबा शरीर होता है, इसमें तो 100 साल में छुटकारा है, उसमें तो हजार हजार साल तक भूत बन के घूमना पड़ता है। तो जो एकादशी पालन नहीं करेगा, आज के दिन अन्न खाएगा, गोलगप्पे ब्रेड पकौड़ा खाएगा, कि आज संडे है, संडे मिल जाए ना तो संडे खाएंगे अंडे, है ना, वो बन जाएंगे क्या, उनको पड़ेंगे यमदूतों के डंडे, इस तरह से डंडे पड़ते हैं अन्न खाने पर, नरक गामी होता है। तो उस दिन उन्होंने अनजाने में, एक दिन आज वाली जो एकादशी है ये भीम एकादशी आई थी, और इस पाप नाशनी एकादशी जया एकादशी के दिन दोनों प्रेत को कुछ खाने के लिए नहीं मिला, कोई शरीर नहीं मिला जिसमें सवारी करके इंद्र तृप्ति करे, तड़प रहे थे, घूम रहे थे इधर से उधर, पति पत्नी एक दूसरे के साथ में घूमते रहे, और पूरा एकादशी का दिन निकल गया। दूसरा दिन सुबह और सूर्य उदय हुआ, तब इन्होंने एक वृक्ष के यहाँ नीचे जाकर के कुछ पत्ते आदि खाए, और खाकर के इन्होंने अपने व्रत को तोड़ा, और जैसे ही पत्ते खाए तुरंत वहां भगवान प्रकट हुए, और उनको अपने साथ कहां ले गए, मनुष्य शरीर में ले गए, मनुष्य शरीर प्रदान किया और इंद्र लोक पहुंचा दिया, वापिस जहां से आए थे नंदन वन से। इंद्र हैरान हो गया देख करके कि कैसे ये दोनों तो मैंने श्राप देकर के प्रेत बनाए थे, वापिस कैसे आए। तो उन्होंने कहा हमने अनजाने में क्या रख लिया है, एकादशी का व्रत किया है, एकादशी के व्रत से ऐसा फल मिला है जो कि हम लोग वापस पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं। और इंद्र आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि अब हम इंद्र तृप्ति की कामनाओं में ना फंसे, अब हम कहां जाएं, भगवत धाम जाएं। लेकिन भगवत धाम जाने के लिए आज हमने चर्चा करी दो चीजों की आवश्यकता है गृहस्थ आश्रम में, कौन बताएंगे पहली क्या चीज चाहिए? हाँ, विश्वास, श्रद्धा। दूसरा इच्छा, जिसमें श्रद्धा होगी और इच्छा होगी वो गृहस्थ आश्रम में क्या कर सकता है, अपने बंधन को कटवा सकता है, काट सकता है। और तीसरा हमने आज चर्चा की है एकादशी का दिन जो है वो महत्वपूर्ण है, और एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, और द्वादशी के दिन उन्होंने क्या किया था, अन्न प्रसाद खिलाया भक्तों को, देवताओं को, इसलिए अन्न खाया जाता है। और एकादशी के दिन समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, और आज स्पेशल एकादशी है क्यों, क्योंकि आज क्या है त्रिस्पर्शा, तीन एकादशियां द्वादशी त्रयोदशी मिक्स हो गई। और आज की जो एकादशी है उसका फल कैसा है, 100 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल आज का। तो इसलिए आज जितना हो सके उतना भजन करिए और जीवन को आनंद मनाइए। श्री श्री राधा वल्लभ लाल की जय। किसी का कोई प्रश्न, प्रश्न उत्तर होने चाहिए, प्रश्न आज पूछ लीजिए त्रिस्पर्शा के दिन, तो आपको 100 करोड़ का फल मिलेगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण।
इसका मतलब यह हुआ कि ये महीना
28 डेज का हुआ, हाँ अगर तिथि के हिसाब से देखे तो हो जाएगा
जी,
हाँ। इसी से तो इसीलिए अभी आने वाले समय में वो जो आएगा ना, क्या एक्स्ट्रा मंथ, मल मास, अधिक मास, वो जो पुरुषोत्तम मास अधिक मास आएगा उसके लिए दिन भी तो इकट्ठे करने हैं। तो इसी प्रकार से जब एकादशी द्वादशी त्रयोदशी मिल जाती है तब एक्स्ट्रा दिन बन जाते हैं जिससे पुरुषोत्तम मास अधिक मास बनता है।
हर साल तो होगा,
तो ये त्रिस्पर्शा भी हर साल नहीं होती है, ये तो स्पेशल फॉर्चुनेट तिथियों पर हमें प्राप्त होती है। और किसी का कोई प्रश्न भक्ति से लेके? हाँ भैया पूछिए। क्या चीज? हाँ, माला मिलती है तो क्या करना चाहिए? माला मिलती है तो इसको हमको, ये तो बहती हुई नदी में या तो हम इसको विसर्जित कर सकते, या फिर अपने घर में अगर मिट्टी हो तो मिट्टी को खोद करके मिट्टी में डाल सकते हैं, लेकिन डस्टबिन में ना डालें, ऐसे स्थान में ना डालें जहां कूड़ा डाला जाता हो। निर्माल्य को निर्माल्य की तरह रखना चाहिए, जितना दिन रख सकते हैं तब तक रखिए। कई बार क्या होता है हम पॉलिथीन में रखते हैं, पॉलिथीन में माला रखने से माला में पानी आता है, वो फ्लावर पानी छोड़ता है और माला गंदी हो जाती है, उसमें स्मेल आती है, दुर्गंध आती है। लेकिन अगर उसको पेपर में रखें, न्यूज़पेपर के अंदर, मेरे पास आज भी 6-6 साल पुरानी मालाएं रखी हैं, वो पेपर में रखने से पेपर जो है ना उसको सुखा देता है, उसके गीलेपन को निकाल लेता है, और वो सूखा पत्ता जो है फूल आपके पास में सदा रहेगा, आप उसको कहीं भी भर के डिब्बे में रख सकते हैं तो सारे सूखे पत्ते एक साथ रह सकते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो उसको विसर्जन कर सकते हैं कहाँ पे, जल बहते हुए जल के अंदर, या फिर मिट्टी के अंदर उसे डालें, डस्टबिन में न डालें, कूड़ेदान में न डालें। ठीक है भैया? हाँ माता जी, देखिए दो प्रकार की एकादशी है, एक एकादशी है समर्थ एकादशी और एक एकादशी है वैष्णव एकादशी। तो जो वैष्णव एकादशी होती है ना, वो एकादशी में सिर्फ भक्ति होती है, ना तो उसकी कोई शुरुआत होती है ना उसका कोई अंत होता है। जो एकादशी का हम चर्चा सुनते हैं वो समार्थ ब्राह्मण विधि है, जो कि जाति से तो ब्राह्मण है परंतु हृदय से भक्त नहीं है। वो शर्मा जी प्याज खाने में शर्माते नहीं है, लेकिन लिखते हैं नाम है मेरा शर्मा, है ना, अशोक शर्मा। अशोक मतलब जहां कभी शोक नहीं व्याप्तेगा, वो अशोक शर्मा जी शाम को ही सिर पे हाथ लगा के बैठ जाते, बहुत टेंशन में हूं, मेरा धंधा मंदा चल रहा है, क्योंकि उनके जीवन में सही रूप का वैष्णव नहीं है। तो जो वैष्णव विधि है उसमें एकादशी प्रारंभ करने की कोई तिथि नहीं है, पहली एकादशी कोई भी रख सकते हैं, और अंतिम करने की भी कोई विधि नहीं, जब तक प्राण है तब तक एकादशी रखनी ही चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना उद्यापन कर दो टेंशन फ्री हो जाओ अन्न खाओ नरक में जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ अन्न खाओ नरक में जाओ, ऐसा नहीं। भक्ति का मतलब है आजीवन काल तक इस जीवन में, इस शरीर में और अगले शरीर में भी भक्ति करनी है। तो इसलिए जब तक मृत्यु शैया पे अंतिम संस्कार होकर शरीर जल न जाए तब तक एकादशी समाप्त नहीं करनी चाहिए, ये भक्त की विधि है, वैष्णव विधि है। समार्थ विधि है पुण्य कर दो, उद्यापन कर दो, फिर अन्न खाओ, वो गलत है।
उससे हमें पुनरपि जननम करना पड़ेगा, दूसरा जन्म मिलेगा, क्योंकि पुण्य प्राप्त करके पुण्यों को प्राप्त करने के लिए भी शरीर में आना है। पुण्य किया, एकादशी का पुण्य मिला, अभी पुण्य को पाने के लिए भी तो आना पड़ेगा। अर्जुन को कहते हैं भगवान, अब ब्रह्मान भुवनान लोकान पुनरावृत्ति अर्जुन, हे अर्जुन ब्रह्म लोक तक जाकर भी वापिस आना पड़ेगा। स्वर्ग की तो बात ही छोड़ दो, स्वर्ग तो नीचे ही है, इसके ऊपर सात लोक है, पितृलोक, स्वर्गलोक, तपलोक, जनलोक, महालोक, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक से भी वापिस आना पड़ेगा अगर भक्ति नहीं करी तो, इसलिए एकादशी भी तो करो, भक्ति के लिए करो। ठीक है भैया, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, दैट इज पर्सनल डिस्कशन, नॉट द जनरल। अभी कोई व्यक्ति जॉब रात में कर रहा है तो क्या कर सकते? ठीक है, भगवान से प्रार्थना करे जॉब दिन का हो जाए ये प्रार्थना कर सकते। हाँ प्रकेश, हाँ क्योंकि आज हमने फास्टिंग किया है ना, तो कल द्वादशी त्रयोदशी पे व्रत नहीं रखा जाएगा। वरहा द्वादशी पे वरहा भगवान का प्राकट होता है, और नित्यानंद त्रयोदशी पे नित्यानंद भगवान, नित्यानंद राम है ना, वो क्या देते हैं? नित्य राम नंद, आनंद मतलब आनंद देने वाले, और नित्य आनंद देने वाले कौन है? नित्यानंद। नित्यानंद ऐसे नहीं है कि एक दिन आनंद दिया दूसरे दिन ले लिया, जैसे हम करते हैं ना, बच्चे को खेलने के लिए मोबाइल दिया, थोड़ी देर उसको आनंद दिया, फिर अपना मोबाइल वापस ले लिया, लेकिन ये कैसा आनंद है? नित्यानंद राम, राम मतलब शक्ति प्रदान करने वाले, आपको ऐसी शक्ति देंगे नित्यानंद राम, है ना, तो वो बलराम के स्वरूप है, शेषनाग अवतार है, तो ऐसे नित्यानंद राम सबको भक्ति प्रदान करते हैं, नित्यानंद प्रदान करते हैं, तो उन दोनों के लिए आज ही व्रत कर लिया हमने। आज व्रत करने से क्या हो जाएगा? दूसरे दिन हम प्रसाद पा सकते हैं। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? हाँ जी, हाँ जी, पारण टाइम पर अगर पारायण नहीं किया तो क्या होगा? तो एकादशी वेस्ट हो जाती है, एकादशी वेस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि द्वादशी देवी जो है वो नाराज हो जाती है। जैसे आज बताया, एकादशी का सम्मान करते हैं व्रत करके, द्वादशी का सम्मान करते हैं व्रत तोड़ के। व्रत तोड़ने की विधि है महाप्रसाद के द्वारा व्रत को तोड़ना चाहिए। अभी कोई व्यक्ति एकादशी तो सम्मान किया, जप किया, लेकिन द्वादशी का सम्मान नहीं कर रहा है, कभी प्रसाद पा रहा है, टाइम पे नहीं खा रहा है, तो उसकी एकादशी का फल भी समाप्त हो रहा है। उसको हरि नाम का फल तो मिलेगा, लेकिन एकादशी का फल नहीं मिलेगा। जी, और कोई प्रश्न? माता जी हाथ खड़ा किए। हाँ, हाँ वो तो फिर अल्टरनेट प्रभुपाद में दिया है कि अगर आप एकादशी के दिन, वो उनके लिए है कि अगर आप द्वादशी पे समय पर पारायण नहीं कर पाए तो आपको द्वादशी के दिन फास्टिंग करना चाहिए पूरा दिन एकादशी वाला, और फिर त्रयोदशी के दिन अपना ब्रेक करना चाहिए फास्ट, या फिर एकादशी को गलती से अन्न खा लिया तो भी द्वादशी को फास्टिंग करके त्रयोदशी को तोड़ सकते हैं। बट दैट इज अल्टरनेट वे, वो एक और आपको दिया गया है उपाय, लेकिन उपाय है वो, लेकिन सही मायने में एकादशी का सम्मान व्रत करके ही करना चाहिए। और किसी ने?
अगर हम उस सिचुएशन में हो, सपोज जैसे सेकंड डे भी आपने कंटिन्यू किया, तो फिर वो थर्ड डे का पारण कैसे रहे?
वो टाइम जो इस दिन का दिया गया था नेक्स्ट डे अप्लाई करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, वही चर्चा हो रही है, पारायण के बिना किया तो एकादशी बेकार हो जाती है आपकी। समय होता है 7 बजे से 10 बजे तक, उसी के बीच में, ना तो 10 के बाद ना 7 से पहले, ठीक है। उसके पर्टिकुलर टाइम, हर एकादशी का अलग अलग टाइम होता है, कभी कभी सिर्फ 15 मिनट का टाइम ही आता है, उसी समय पर एकादशी द्वादशी देवी का सम्मान करना चाहिए कि हे द्वादशी देवी, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, महाप्रसाद को पारायण कर रहा हूँ, अभी मैं एकादशी व्रत तोड़ रहा हूँ। तो बड़ा ध्यान पूर्वक एकादशी की अगर भक्ति लेनी है तो सम्मान पूर्वक, नहीं तो पुण्य प्राप्त करना है तो पुण्य करते रहोगे तो क्या है। टाइम का कैलेंडर आता है मंदिर में, आपको श्री नीलकंठ प्रभु जी आपको विराजमान है यहाँ पर, आपको कैलेंडर दे देंगे, एकादशी कैलेंडर है ना प्रभु जी मंदिर में, है माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा।